Yeah. श्री चित्रकूट धाम है। चित्र का अर्थ समझते हैं चित्र विचित्र, बहुत रंग बिरंगी है, ऐसे रंग रंगीला बहुत चित्र विचित्र कूट मात्र पर्वत शिखर, अनेक पर्वत श्रेणी, अनेक अनेक सुंदर सुंदर लता वन बनानी से सुशोभित, फल पुष्प से सुशोभित, झरना नद नदी से, पशु पक्षियों से बहुत सुंदर प्राकृतिक प्राचुर्य परिवेश, बड़े चित्र विचित्र कूट समूह, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है चित्रकूट। बड़े विचित्र दर्शनीय स्थान है, यहाँ पर अनेक अनेक ऋषि मुनि तपस्वियों का विचरण भूमि रहा। भगवान राम, मैं आपको बताया था जैसे काल आप प्रयाग में थे, तो भगवान राम वनवास में प्रयाग तक आकर के प्रयाग में निर्णय लिए कि उनके लिए रहने उपयुक्त के वन कहाँ है। मैं कल बताया था उन्होंने भरद्वाज ऋषि के साथ मंत्रणा की। भरद्वाज ऋषि बताए कि देखिए तो बहुत ऋषि मुनि रहते हैं, मैं तो यहाँ रह गया, लेकिन आगे यमुना पार में बस आश्रम ही आश्रम मिलेंगे आपको, तो आप आते समय देखे होंगे रास्ता कितने खराब है, और दोनों तरफ विश्वामित्र आश्रम ही देखे होंगे, वाल्मीकि आश्रम था, वाल्मीकि आश्रम था, ऐसे कई ऋषि मुनियों का आश्रम था ही। अब जब भगवान सीताराम लक्ष्मण जब आए प्रयाग में, प्रयाग के बाद तो वो अपने जो मित्र कुहक को विदा कर दिए, बोले ना यहाँ तो बस हम तीनों जाएंगे। सबको जो आश्रम के और भी कुछ सेवाकारी भक्त थे भरद्वाज ऋषि के, उनको ही बोले ना ना बस हमको नक्शा रास्ता बता दे, क्योंकि जीपीएस नहीं था तभी, तब इसलिए बोले कि हम रास्ता बता दीजिए हम चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, हम वन में जाएंगे, दूसरे के सहायता से वहाँ तक वहीं से वन प्रवेश करेंगे। तो ऑफिशियली वनगमन उनका प्रयाग के बाद ही हुआ है, प्रयाग तक तो आश्रम में रहे और आतिथ्य भी ग्रहण किए थे। तो उसके बाद में जब वो प्रयाग पार करके जमुना ब्रिज तक आते हैं, जमुना ब्रिज था नहीं तभी, विशाल जमुना जी था पूरे निर्जन वन प्रदेश के, तो कोई घाट ही नहीं था, कोई आते नहीं थे इधर, भयानक जंगल पशु पक्षी कौन आएगा इधर, इसलिए इस तरफ घाट नहीं था, उस तरफ गंगा जी के ऊपर घाट था, लोग आना जाना करते थे, इसलिए नाविक होता था, नाव होते थे, लेकिन लोग जहाँ आने जाना नहीं तो घाट का जरूरत ही नहीं, तो कोई नाव भी नहीं था। तो भगवान तो आ तो गए, आकर नदी के पास जमुना के पास खड़ा होकर सोचते अब क्या करूँ, तो है नहीं कैसे पार करूँ, जमुना जी तो विशाल दीर्घ है बहुत चौड़ा, कैसे पार करूँ। अब राम तो बोले मैं तो तैरना आता है, मैं तैर लूँ, लक्ष्मण बोले मैं भी तैर लूँ, सीता जी बोले हम तो तैरना नहीं जानती, अब क्या होगा, वो तैरना नहीं जानती थी, अब क्या करेंगे, दोनों भाई मिलकर उनको बोले बैठो हम कुछ उपाय करते हैं, मिलकर के जाकर क्या करेंगे, और कोई बड़े बड़े पेड़ फेड़ काटने से केला के पेड़ काट के लाए, केला के पेड़ था तभी, आजकल तो इतनी में होता ही नहीं, तभी था, इसी वर्णन आता है कदली वृक्ष, आप सब देखे ना नहीं केला के पेड़ किसी पिक्चर में टीवी में, ये नहीं देखे, अच्छा मायापुर में जाकर देखेंगे, बाकी चंडीगढ़ तो नहीं होता, होता
है
कोई कोई, तो इसे केला के वृक्ष था घंज जमुना किनारे कहीं, तो कदली वृक्षों को काट कर केला के वृक्ष, आप जानते हैं पानी में नहीं डूबेगा, तो उसको ला करके 10-20 उसको बांध दिए, केला के छिलका से बांधे उसको, इकट्ठा जोड़ दिए, ढेला क्या बोलते हैं उसको आप लोग, क्या बोलते हैं, बेड़ा, बेड़ा, हाँ बेड़ा ही ढेला बोलते हैं, इसे खोला बस कुछ नहीं है साइड में, शुद्ध केला के जो बीच वाले होता ना पत्तल काट करके उसी को बांध दिए, बस वो डूबेगा नहीं, भेड़ा, हाँ प्लेटफॉर्म, भेड़ा शब्द एक्चुअली, तो उसमें ऊपर सीता जी को बैठा दिए, बोले बैठ जाओ वो डूबेगा नहीं, और सीता जी के भार को संभालने लायक के बनाए थे इतने बड़ा साइज, ताकि ना डूबे, सीता जी के वेट की कैलकुलेशन करके उनको बैठा दी, बोले भाई भेड़ा तो कोई चलाने वाले होते, नौका में बैठने से नौका अपना भी चलेगा क्या, वो धार में बहले जाएगा संगम की, वो जमुना जी के धार, तो सीता जी की तो बैठा दी भेड़ा के ऊपर, दोनों भाई कमर कस करके आप कूद पड़े, दोनों साइड में एक हाथ में हिड़ा को पकड़े, एक हाथ में इसे चलाते चले। ऐसे ही दोनों भाई दोनों तरफ से उसको चलाते चलाते तैरते तैरते पूरा जमुना पार कराए, सीधा देवी पार करा करके उस तरफ आए। इसी बार क्या हम लोग तो बस में बैठ करके बीच में ऊपर आ गए फटाफट, भगवान को इतनी परिश्रम करना पड़ा था। तो ला करके तब लगता होगा क्यों उसको लेकर आए, बड़ा झंझट है, देखो नदी पार करने में उनको हम परिश्रम करना पड़ा। तब पारी करके इधर कपड़ा बदलने के लिए भी वस्त्र नहीं था, लेकिन ऐसे चले सूख गया होगा। तो चल करके बीहड़ जंगल था, भयानक जंगल। तो जंगल के रास्ता में चले, कोई पता होता नहीं है कि इधर जाए इधर जाए रास्ता, कोई साइन बोर्ड फाइन बोर्ड की सुधा नहीं, घनघोर जंगल है, कोई लोग बाग नहीं जाते। तो जंगल में केवल जंगली पशु पक्षी और कुछ कोल भी लोग रहते हैं। इसका जंगल में समस्या रहते हैं, कुछ आदिवासी लोग जंगली लोग रहते हैं, कहीं कहीं आदिवासी गांव है, कोल भी लोग जो जंगल में रहने वाले जिनका संस्कृति जंगल में ही है, कभी नगर देखे नहीं, वो लोग जंगल जात द्रव्य से लेकर चलते हैं, पशु पक्षी मार के खाते हैं। इस प्रकार के भील लोग जो आदिवासी जंगली लोग, वही कहीं कहीं पड़ा मिलता था चलते। वो लोग कोई कोई उनका तो घर उठेंगे ना, कपड़ा लत्ता ढंग से पहनते हैं और चमड़ा आदि पहनते हैं और जाते हैं देखने के लिए, शिकार करने के लिए, वही उनका जीविका है। वो लोग कुछ जीविका करने जा रहे थे, देख लिए ऐसे अति अनिंद्य सुंदर अपूर्व पुरुषत्रय, दो मेल और एक फीमेल चल के जा रहे हैं। देख करके उन लोग को लगा ये क्या है, आपने आंख को तो पहले विश्वास नहीं की, बोले क्या है ये आंख को कुछ दोष हो गया, ये क्या रूप देख रहे हैं जंगल में, तो ऐसे रूप हम जब से आंख उठा तब तक नहीं देखे थे, ये क्या है, इतने कोई जानवर तो जंगल में है ही नहीं इस क्योंकि मनुष्य देखे थे उन लोग ने, लेकिन इतने सुंदर कोई मनुष्य होगा ये उनका कल्पना से अतीत था। तो वो देख करके दौड़े अपने अपने पड़ोसी गांव को इधर उधर जाकर, हालांकि अरे पता नहीं सुने थे कोई देवता होंगे, वो देवता उतर आए तो गांव जो कोल भील सब इधर उधर दूर दूरांत में आदिवासी गांव थे, सब भीड़ इकट्ठा हो गई। तो तरफ से देख रहे हैं, देख करके आपस में विचार कर रहे हैं, बोलते हम सुने थे कोई तो सृष्टि करता है, कोई विधाता है जो दुनिया बनाने वाला है, दुनिया बनाया, लगता है उस दुनिया बनाने वाला ने उनका पास जितने मटेरियल था सारे मटेरियल इंग्रेडिएंट सारे उन्हीं में लगा दिए और कुछ बाकी नहीं रखा, इतने खूबसूरत कोई हो, बस इसी में बनाने में सारे लगा दिए, उनके कला कुशल सब लगा दिया उसमें, इतने सुंदर है। तो उनके सुंदरता की तो सराहना करते करते बोले कई तो घंटे तक उनकी सुंदरता की सराहना की, फिर आपस में बातचीत की, फिर चिंता की बात है भाई इतने सुंदर पुरुष है, उनका कोई पिता माता होंगे, उनको कैसे छोड़ दिए जंगल में, कौन ऐसे हतभागा माता पिता होगा इतने सुंदर रूपवान पुत्र को छोड़ देगा जंगल में, अगर ऐसे पुत्र को बिहड़ जंगल में छोड़ दे तो काहे को पुत्र बने, घर काहे को बना, रहने किसी के लिए, घर किसी के लिए, इन्हीं के लिए तो घर होना चाहिए रहने के, ऐसे पुरुष घर में ना रहे तो घर किस लिए बना, कोठी किस लिए बनता, महल किस लिए बनता, जो एक पुरुष जंगल में है, धीक है घरवार को, धीक है माता पिता को, जो ऐसे पुत्र को अपने पास ना रखे, ऐसे पुत्र को घरवाड़ी कोठी में ना रखे। इस प्रकार से बोले देखो तो सही, चलते भी है जंगल में, पैर में कोई पादुका भी नहीं है पदत्राण के बिना, तो थोके बोलते हैं कि पता नहीं ये चप्पल जूता दुनिया में विधाता किस लिए बनाया, जब ऐसे पुरुष के पैर में चप्पल जूता ना लगे तो ना बनना ही बेकार है, कोई सार्थकता ही नहीं हो, कोई कपड़ा वस्त्र नहीं, कोई जूता नहीं, इसे वस्त्र बना ऐसे पुरुष के जो उपयोग नहीं आएगा, बना किस लिए सब, वो किस लिए आए। तो कुछ और लोग बोले अरे नहीं समझ रखा, अभी तो विधाता को बोल रहा था इतने बनाया, अगर उन लोग को कोई माता पिता अपना घर में रखता, कोई जूता धोती कुर्ता पहना कर रखता, तो तुम्हारा सौभाग्य खोलता, ऐसे रूप देख पाता। हाँ हाँ हाँ, हे भगवान धन्यवाद, केवल हम लोग के कल्याण के लिए यहाँ आए हैं। कपड़ा उतार के आए, जूता उतार के आए, नहीं तो हमारा क्या है, हम कैसे देख पाते ऐसे पुरुष, ऐसे देवदुर्लभ दर्शन हमको कहाँ मिलता। ऐसे देख करके आपस में बातचीत विचार करके उस धन्यात्मा भगवान राम के दर्शन करना कितनी बड़ी बात है। केवल राम नहीं, राम परिवार पूरा है, भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ उनके दर्शन करते, दर्शन करके कोल भील ना कभी नाम लिए, ना कोई जप किए, ना कभी कोई नियम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आज अद्भुत दया भगवान के, जिन लोगों का पुण्य के खाता में नाम नहीं गया, पशु हिंसा करते करते जीवन बिताते हैं, पढ़े लिखे नहीं, असंस्कृति असंस्कारी मनुष्य हैं, इतने नीच प्रकार से उनका खान पान जीवन, लेकिन उनको भी दया करने के लिए भगवान महाकृपालु आज उनके जंगल के रास्ते पर चल रहे हैं, और उन अज्ञानी अबोध जीव को केवल दर्शन देख करके उनकी बुद्धि सुधार रहे हैं, वो देख करके आतुर हो रहे हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। स्त्रियां आई, अब देखकर तो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको देखते देखते चर्चा, कुछ ऐसे लोग गांव में होते हैं जिनका हाथ पर इंजर्ड हो गया होगा, कोई बीमारी भी हुए होंगे, जो चल कर जा नहीं पा रहे होंगे, उनके पास खबर पहुंचता है, अरे क्या आज हमने देखे, जब से आंख उठा ऐसे रूप हम देखे ही नहीं थे। तो लोग जो घर में बीमार थे, जो आ नहीं पा रहे थे, वो लोग भी अपने दुर्भाग्य मानते थे कि हाय हाय आज ऐसा रूप हमका देखने नहीं, हम देख नहीं पाए, वो निकल गए, चल के चले जाएंगे वो लोग। इस प्रकार चर्चा के साथ तो स्त्रियां आई, पुरुषों का भीड़ देख देख के पुरुष लोग तो चल पड़े उनके साथ, बोले जाने दो, अब घर में आग लगने दो, अब भूख भूख कुछ नहीं, अब ऐसे पुरुष देखने मिला, बस जीवन हमारा धन्य होगा, उनके साथ चलते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं। देखो यही है भक्ति, भगवान को दर्शन करने मात्र है, जब हृदय के अंदर सुप्त भक्ति भाव था, सेवा भाव था, तो तुरंत प्रकट हो गया। इन अति नीच कोल भील लोग सुनाई पड़ता ना नहीं अभी, ओके क्या बोल रहा हूँ, हाँ जो पुरुष लोग थे उनका अंदर सुप्त भगवत सेवा भावना प्रकट हो गया, वो लोग सोचे अरे अब ऐसे पुरुष से जंगल में आए हैं, हमारा अतिथि मेहमान ऐसे व्यक्ति दुर्लभ व्यक्ति बने, तो हम तो कुछ उनके लिए करें, वो चप्पल भी नहीं पहने, कुर्ता भी नहीं पहने, वो जंगल में रहना नहीं जानते हैं, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे रात बिताएंगे, कैसे दिन में भोजन बने, तो हम लोग हैं, हमारे अतिथि तो वही हैं, तो हम करें क्या। तो चल पड़े सब उनके आतिथ्य, उनको सेवा करने के लिए ऑटोमेटिक मन में भाव जागृत हुआ, और शिकार आदि छोड़ करके घर बाड़ी का काम, घर में काम क्या करेंगे, वो तो चल पड़े। स्त्रियां बोली हमारे काम जरूर, हम भी आपके पीछे पीछे चलते, घर के जो स्त्री और बच्चे थे वो भी सब आ गए, बोले हमारा तो जंगल में रहते हैं, हमारा कौन सा फ्लैट है, एसी रूम है ना, ऐसे कुछ नहीं है, अटैच बाथरूम एसी रूम ऐसे कुछ ही नहीं, हम तो जहाँ जंगल में पेड़ के नीचे सो जाते हैं, कहीं कुटिया कोई ऐसे आग भाग जला के सो जाते हैं, तो वो जहाँ रहेंगे वही हमारे लिए रहना चाहिए। तो उनके पीछे पीछे चल दिए सब, स्त्रियां आकर के पीछे पीछे आकर देखते हैं, बोले एक बात आश्चर्य है, एक से बढ़कर एक दोनों सुंदर रूप वाले दो पुरुष हैं, कोई किससे कमी नहीं, 19-20 भी नहीं, इतने सुंदर रूपवान पुरुष दो, उनके बीच में एक सुंदर स्त्री, क्या रहस्य भाई, क्या रहस्य हो सकता है, उनका कुछ बुद्धि आया नहीं, क्या गड़बड़, क्या रहस्य, क्या मत। तो पुरुष लोग तो कुछ समझने पर पता नहीं क्या है, देखो पता चलेगा बाद में शायद, स्त्रियां को बड़े लगा, ये दो है, हाँ स्त्री एक ही है, क्या है, और वो भी कुछ कम नहीं, ऐसे रुकूंगा। तब जा करके साहस करके गए, वो स्त्रियों के झुंड बीच में हो गए, स्त्रियों के साथ हो गए, बोले हमारा ग्रुप उनके साथ में, स्त्रियाँ स्त्री के साथ चले, उनके झुंड साथ हो गए और हो करके बड़े साहस करके उनको पूछने के लिए गए, लेकिन उनके भाषा तो कुछ और होगा, ब्रज भाषा, आजकल वैदिक भाषा में ब्रज भाषा इंग्लिश को कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा तो मतलब सीता जी इंग्लिश जानती होगी नहीं पता नहीं, कुछ ब्रज भाषा जानती होगी, तो उन्होंने तो वो तो कहाँ पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, अपने भाषा में बोलेंगे। जो ब्रज होते हैं भले उनको नियम कानून और इसने जब जो सब शुद्धि विधि कार्यक्रम नहीं पता है, लेकिन एक बात जरूर है, पाप जरूर करते हैं लेकिन कभी अपराध नहीं करते हैं, हृदय उनका बड़ा निर्मल है ना, वो जानते हैं जो काम मार के पशु खाएंगे इसके ही जानते, लेकिन कोई कपटता नहीं उनके अंदर, छल कपट, इसीलिए छल छिद्र कपट नहीं है, इसीलिए भगवानों को सुलभ हुए, इस नगरवासी को सुलभ नहीं हुए, उनको सुलभ हो गए। तो इसी छिद्र छल कपट इन जो पापी पुरुष भले ही हो, तो उन लोग ने उत्साह करके पूछने जा रहे हैं, तो अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं, पूछना नहीं आता। एक कहानी मेरा याद आता है, एक गांव में एक इस प्रकार के भील के स्त्री थी, वो काम करती थी सब घर के जाकर, नौकरानी थी। तो उस गांव में एक बार कुछ साधु संत आए, तो गांव के लोग बोले भाई ये साधु संत आ गए, उनके सेवा तो करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं, हम सब बिजनेस धंधा में हैं, तो कौन करेंगे, चलो रहने के लिए कोई कमरा दे देंगे उनको क्लब हाउस वगैरह, लेकिन उनकी सेवा पानी कौन करेगा, उनको कपड़ा धोना सब बर्तन बनाना इसमें। तो वो जो नौकरानी काम करती थी गाँव में, जो ब्रज भील की थी, उनको बोले देखो तुम ये साधुओं का सेवा करना, हम आपको पेमेंट कर देंगे, हमको तो काम करना है, हम जो लोग करेंगे ना, देखो हमारे जैसे नहीं है, वो जो साधु संत है उनके साथ बड़े ढंग से बातचीत करना होगा ना, वो कैसे बातचीत कैसे करना पड़ेगा, काम तो बोले सो काम कर दूंगी ना, नहीं वो जैसे उठेंगे उनको आएंगे तो उनको प्रणाम करना है, स्वागत करना है, प्रणाम कैसे करना होगा, बोले उनके चरण में प्रणाम करना होगा, दंडवत प्रणाम चरण में करना है, चरण दंडवत देते पंचांग प्रणाम करना, तो चरण क्या होता है, वो बिचारी क्या है, तुझे नहीं चरण क्या होता है, कोल भील उनको तो पता नहीं, वो तो पशुओं की तरह रहते हैं, उनको समझाना पड़ा, बोले पैर बोले ये खुरा है, ये खुरा को बोलते हैं चरण में देना, बोला अच्छा तो कैसे बोलना पड़ता है, बोले आपके श्री चरण में जुहार ऐसे बोलो, श्री चरण में दंडवत प्रणाम ऐसे बोलो, तो रटा दिए, कोई लिखा पढ़ी तो नहीं थी, खूब याद किया, दो चार दिन याद किया, आपके श्री चरण में दंडवत प्रणाम, आपके श्री चरण में प्रणाम, आपके श्री चरण में प्रणाम याद किया, बोले ये कम से कम आते समय इसे बोलना भी किस सेवा करना, और जैसे साधु संतगण आए तो उनका थाट मीटिंग बढ़ गया, अब तो बोलना होगा, उनको बोले नहीं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, वो भूल गई बेचारा, जैसे देखा बड़े बड़े जटा जुटधारी तिलक वाली से वो आ गए, तो उनको देख करके जो याद किया था भूल गए, क्योंकि प्रमटर करने वाले प्रमटिंग करने वाले थे नहीं, है ना, नहीं तो रियल सेल तो की नहीं थी, अब क्या करे, पसीना उतरना लगा उनको, अब क्या बोलूँ भूल तो गई, बहुत याद करने लगा, याद ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ, तो साड़ी की पणत को इसे गले में लाल कर डाल करके अपने भाव से जितने दीनहीन विनम्र होना चाहिए अपने रीति के अनुसार, आप निष्कपट भाव से इस विनम्र होकर हाथ जोड़ करके अपनी भाषा ही निकल पड़ी, हे गोसाईगण आपके खुरा को झुका, तो आप अपने प्रणाम के कहते ओरी जो तो वो तो बड़े पक्के दाढ़ी वाले जटे वाले थे दुर्वासा जी के डिसेंडेंट्स, वो सुन करके बोले अरे बाप ऐसी कैसे अनपढ़ नारी, हमको पशु समझ रखा, हमारा खुरा बोलता है, हमारा खुरा है मनुष्य नहीं है पशु है, ऐसे व्यवहार करके तो नर्क जाओगे, कुछ ना बोलते वो बेचारी उठ कर बोलते, आप जैसे महात्मा गोसाई लोग सिनाना बदल आ सकते हैं, मैं अनपढ़ गवारी कहाँ है जानता हूँ, कहाँ जा पाऊंगी मैं, कहाँ नरक, आप जैसे महापुरुष को अरे हम क्यों नरक भेज रही, हम नरक भेज निश्चित रहू, हमें बोल ही रहा हूँ मैं तो काम करने वाली हूँ, नरक दिशा जाएगा मैं कहाँ जाऊँ, तो आप लोग सिना जा सकते हैं। अब क्या कहें, वो बेचारी निष्कपट थी अपना विचार से, वो बेचारा जानती नहीं थी नरक क्या सरो क्या होती जानती थी। अब बोले तो नरक जाना पड़ेगा, बोलते प्रणाम की मैं आशीर्वाद दे दे नरक जाएंगे, बोलते नरक मैं थोड़ी जा पाऊंगी, आप जैसे लोग नरक थोड़ी जानते होंगे, आपके काम करते हुए। तो इस प्रकार से बिना माइक में चलेगा नहीं, थोड़ा नजदीक आ गए तो भले बस ऐसी ना हो, अगर साउंड ठीक होता तो अच्छा रहता। हरे कृष्ण हरि बोल, इधर ठोके हरे कृष्ण। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रयास किए सीता जी के पास जाकर उनको पूछने के लिए कि क्या रहस्य है, ये दोनों के बीच में आप कौन है, आपके क्या नाता है। तो आपने भाषा बोलने लगे तो मैं भाषा तो सीता जी समझ नहीं पाई, लेकिन जो भाषा वाले भी नहीं है भाव को प्रकाश अंग भंगी से तो कर देते हैं, उसको क्या भाषा बोलते हैं अपने, सांकेतिक भाषा में बोलने लगे, ऐसे कुछ बोले होंगे क्या है। सुहिता जी ने भी अपने सांकेतिक भाषा प्रयोग करके बोलने लगी, उत्तर देने लगी। वो बोले वो क्या है, दोनों के बीच में आप अकेली कैसे हैं, क्या रिश्ता है आपका, नाता है क्या। सुहिता जी ने क्या बोलेगी, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगी पतिव्रता है, तो बोलने लगी उनकी भाषा में कि ये सबसे पहले पीछे क्यों बोली, बोले ये जो पीछे आ रहे हैं ना मेरे, ये मेरे छोटे देवर हैं। इतना ही आंसर की, ये मेरे छोटे देवर हैं और ये हैं, समझ गया ना आंसर पूरा हुआ ना। आपने नियम के अनुसार नियम की पालन की कि पति के नाम नहीं कहेगी, लेकिन वो समझने वाला समझ गया, ये जब देवर है वो उनके भाई, ये मेरे छोटे देवर है तो उनके अग्रज हैं, उनके बड़े भाई। तो उन्होंने भी सीता जी के साथ हो चलो बोला अच्छा ऐसा है तो हम भी चलते हैं, तो आपको देखभाल करने के लिए। तो जा करके उन्हीं लोगों ने रास्ता में आगे आगे करके लिए, कहाँ में रात को विश्राम करना होगा, कुछ घास आदि घास पत्र घास पत्र बिछा कर सज्जा बनाना, और फल कंद कहाँ से कहाँ भगवान कहाँ से लाएंगे, ये सब ला करके देना, शायद बड़े हिंसक जंतु घूम रहे हैं तो इसलिए धनुष बाण लेकर के आग जला कर कहाँ निरापद जगह ऐसे बताना, सब पूरे भगवान के बड़ी गार्ड सिक्योरिटी बन करके उनके साथ में सेवा में लग गए, सेवा भाव जग गया, जहाँ भगवान आए सेवा हुआ बन पड़े सब। तो इस प्रकार से आ करके सबसे पहले विश्वामित्र ऋषि जो प्रवेश करते हैं इस क्षेत्र में, सबसे पहले विश्वामित्र जी मिलते हैं। तो विश्वामित्र जी बताएं कि यही सबसे उत्तम जगह है, जैसे भरद्वाज जी बताए सबसे अच्छा है, बहुत ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं, बड़े सुंदर जगह है, और आप निश्चित रूप से यहाँ जाइए और जा करके आपके लिए अच्छा है एक जगह चुन करके, और आप रह सकते हैं, निरापद सबसे अच्छा जगह है। तो भगवान सारे कोल भेलियों के साथ आ करके पूरा सर्च किए इस क्षेत्र, ये भी जैसे ब्रजमंडल 84 क्रोश है, चित्रकूट धाम भी 84 क्रोश है, इतने बड़े एरिया ये धाम, तो 84 क्रोश को सर्च करके उन्होंने अपने रहन स्थली जो है पन्न कुटीर, वो एक पर्वत चुने पर्वतश्रेणी के बीच में, जिस पर्वत का नाम था श्री कामतानाथ। इसमें कामना देवी एक देवी निवास करते थे वो पहाड़ में, इसके लिए उनका कामना देवी था, लेकिन श्री तुलसीदास गोस्वामी महाराज ने कहते हैं कि किए कामतनाथ तो राम प्रसादा, भगवान राम के कृपा से, भगवान राम के प्रसाद से ये सभी लोगों के कामना पूर्ति करने के लिए समर्थ हो गई। उनकी कृपा से ये कामतनाथ हो गई, सर्व प्राणियों के कामना को पूर्ति करने वाली सामर्थ्य प्राप्त कर गई, सबका विपद को हरण करने के सामर्थ्य प्राप्त हो गया उनका भगवान राम के प्रसाद से। भगवान राम ने इस कामतगिरी को अपना रहने के लिए स्थान चुने, वहीं अपना कुटीर प्रमोद कुटीर निर्माण किए, वर्ण कुटीर, और लगभग 11.5 साल तक लगातार इसी क्षेत्र में रहे, विचरण किए। वनवास की जो 14 वर्ष अवधि था उसमें प्राय 90% अवधि तो यही बीता है इस क्षेत्र में। विशेष करके हम जिस क्षेत्र की परिक्रमा करेंगे उस कामतनाथ उनके रेसिडेंस था, उनके पन्न कुटीर वहाँ था, और ये संपूर्ण क्षेत्र विचरण था। घूमते थे दिन भर, कभी तो कुछ काम तो था नहीं, ऐसे घूमते थे विभिन्न जगह से, कोई स्नान करे, कोई फूल चुने, कोई क्या करे, कोई क्या करे, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इस क्षेत्र में, और नाना प्रकार के ऋषि मुनि सब इन्वाइट करते थे, प्रभु यहाँ पर हारिए, यहाँ पर देवता लोग को पता था, देवता लोग को पता था भगवान आएंगे वन में, तब तो हमारा काम होगा, असुर विनाश होगा, कुछ होगा, तो इसलिए देवताओं ने भगवान यहाँ आकर रहेंगे जब भरद्वाज ऋषि इंगित किए, जब आए देवताओं ने एडवांस पार्टी आ गए थे, एडवांस पार्टी आ करके विभिन्न प्रकार के सजावटी सब करने लगे, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे गुफा पर्वत सब सजा करके चित्र विचित्र करके चले गए देवताओं ने। ये सब कद जाएंगे देखेंगे, जो गुप्त गोदावरी आदि सब देवताओं के कार्यक्रम वो सब करके रखे थे कि उनके मन लगे यहाँ रहे, इस प्रकार से व्यवस्था किए थे भगवान राम के निवास के लिए। तो भगवान राम यहीं रहे, और इसी क्षेत्र से, लगभग इसी क्षेत्र से दंडकारण्य के सीमा शुरुआत होता। जो दंडकारण्य महाअसुर रावण का राज्य का सीमा था, यहीं से सीमा शुरू हो रहा था, इसलिए उनके दो भाई बड़े भयानक युद्ध कुशल वीर थे, उनका नाम था खर और हाँ, उन दोस्तों को अपॉइंटमेंट, दोनों को ही अपॉइंटमेंट किया था 14,000 सेनाओं के साथ, वही अपॉइंटमेंट BSF थे, BSF क्या होता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहीं पे थे बॉर्डर थे बॉर्डर था राजा का, ये BSF डिपार्टमेंट को संभाले थे, तो फिर रुके थे, तो और उत्पात हमेशा मचा के रखे थे, यहाँ बड़े उत्पात मचा के रखे थे, ऋषि मुनियों का बहुत पृष्ठवांश करते थे। तो जब अत्रि मुनि के पास जाएंगे, कल अब जाएंगे, तो अत्रि मुनि ने भगवान को प्रार्थना की, इस भयानक राक्षस की सेना यहाँ रहते हैं BSF, तो उनके आप कुछ कीजिए, ये सब अद्भुत अद्भुत वीर हैं, और उन्होंने भी संकेत किए थे कि आप जब रावण वध करेंगे, रावण वध करने के लिए रावण का पुत्र जो इंद्रजीत मेघनाद है वो तो दैवव्रजुक्त है, देवताओं के बर से, और उन्हें इतने बलियान है, मृत्यु को अपने कबल में रखा है, कैसे न उनको कोई मारना चाहेगा, उनको मारने के लिए 3 क्वालिफिकेशन होना चाहिए किस वीर व्यक्ति का, ये 3 योग्यता के बिना उनको कोई वध कर ही ना सके। क्या क्या 3 योग्यता है? 1 योग्यता है कम से कम 12 साल तक विनिद्र रजनीश, दिन रात नहीं सोए, दिन में नहीं सोएगा, रात भी नहीं सोएगा, 12 साल तक जो नींद ही नहीं लिया हो, वो पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन, 12 साल तक जो भोजन ही ना किया हो, खाना नहीं खाया, 12 साल तक निराहार, ना आहार ना निद्रा। और तीसरा क्वालिफिकेशन था 12 साल तक स्त्री सहवास भी ना किया। ये 3 क्वालिफिकेशन जो 12 साल कंटिन्यू, इतने भारी संयम तपस्या जो किए, इतने बड़ी संयम ब्रह्मचर्य जो पालन किए, वो जाकर इंद्रजीत वध के लिए काबिल बन पाएगा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए लक्ष्मण ने ये जो क्वालिफिकेशन को ही अचीव किए, यहीं बढ़कर किए थे। अब जब हम परिक्रमा करेंगे उसके पश्चिम तट पर एक छोटा सा पर्वत है, इसको लक्ष्मणगिरी कहते हैं, लक्ष्मण पर्वत, जिसके शिखर में लक्ष्मण ने विरासन पर विराजमान रहते थे, धनुर्बाण लेकर के हर निशी भगवान राम जानकी पूरी सुरक्षा प्रदान बड़ी गार्ड की तरफ रखते, चारों तरफ निगाह रखते थे, कोई दूर से कोई आए बिल्कुल धनुर्बाण गन पॉइंट पर रेडी दबा कर रखते थे, लोडेड राइफल रखे रहते थे। तो उन्होंने जब वहाँ रहते थे तो एक भी दिन डे एंड नाइट ड्यूटी में रहते थे, रात को नहीं सोते थे, दिन में नहीं सोते थे और खाते भी नहीं थे। भगवान उनको देते थे जो फल, लक्ष्मण ही जाते थे फल लाने के लिए और बाकी सब कोल भी लोग फल लाते थे, भगवान ने लक्ष्मण देते फल लीजिए, भगवान नहीं कहते थे आप खाइए करके, भगवान ने कभी लक्ष्मण को उसको फल को खा लीजिए करके नहीं कहते थे, ऐसे देते थे, वो लाते थे रख लेते थे उसे नहीं खाते। अंत में जब कहा गया तो बोले जाकर देखिए अभी भी जमा होगा, उनको काउंट किया गया जो कमी पड़ा इतने दिन का, बोले एक दिन वो फास्टिंग था उस दिन आप ही नहीं खाए थे, नहीं दिए थे कम था। तो एक भी दिन फल कंद मूल भी भोजन नहीं किए थे लक्ष्मण ने, इस प्रकार का धारण करके वो उन्होंने यही चित्रकूट में अपने भयानक तपस्थली थे उनका था लक्ष्मण के, इतनी बड़ी तपोमय भूमि है, इतने संयम प्रत ब्रह्मचर्य, इतने कठोर तपस्या लक्ष्मण ने किए थे, इसलिए इस तपस्थली को लक्ष्मण तपस्थली को भी आप लोग प्रणाम करें, ये कोई साधारण स्थली नहीं, कुमार लक्ष्मण के महातपस्थली यही तपस्या थी, बड़ी भारी तपस्या। तो इस प्रकार भगवान राम के ये आमोद प्रमोद विचरण स्थली था इस प्रकार, तो इसलिए चित्रकूट की इतने महिमा है, चित्रकूट के हरेक लता पता पेड़ पौधा और पर्वत श्रेणी सब भगवान के संग प्राप्त किए हैं, भगवान को आँखों में दर्शन किए हैं, उनके संग पाए हैं और उनके कथा सुने हैं, यहाँ पर कितने भगवान दिन रहे उनके आँखों देखा साखी है, बाकी तो सब गुजर गए लेकिन ये जो पर्वत श्रेणी है वो तो हैं, वो ही देखे हैं, ये मंदाकिनी माता वो भी देखी है, भगवान की लीला विहार है सब देखे। तो ये सब को देख करके जो भगवान राम प्राण, जिसका जिनका प्राण भगवान राम में है, जिनका मन भगवान राम में रमता है, वो जब इस स्थली को आते हैं, इस स्थली को मंदाकिनी माता को देख करके, इस चित्रकूट पर्वत को देख करके, ये सब लीला विलास भूमि को देख करके, उनके मन में राम भक्ति जागृत होता है, भगवान राम इस पर जाए गए होंगे, यहीं पर बैठे होंगे, इसी पर ये किए होंगे, इसी पर विचरण किए होंगे, इस पर स्नान किए होंगे, स्मृति जागृत होता है, उद्दीपन होता है, इसलिए भक्तगण को आना यही आते हैं। विशेष करके जो यात्रा आप करते हैं, इस यात्रा के महत्व है, कोई कोई बोलते हैं क्या है, ये कोई टूर नहीं है, कोई पिकनिक नहीं है, हमारा जो भक्ति में नौ प्रकार के नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में एक अंग है पाद सेवन, पाद सेवन भक्ति अंग के अंतर्गत है ये यात्रा, आप लोग सब एक भक्ति अंग जो पाद सेवन भक्ति अंग है उसी को आयोजन कर रहे हैं, ये कोई साधारण पिकनिक या टूर नहीं है, साधारण पिकनिक टूर में जाएंगे मजा किए नहाए धोए म्यूजिक के नचे फिर आ गए, ऐसा नहीं, इसलिए यात्रा का जो केवल जा कर के नहाना और मजा करके आ जाना है, यात्रा का सबसे बड़ा मुख्य अंग होता है श्रवण, जो भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणांग, वो यात्रा में किया जाता है। और यात्रा में श्रवण का विशेषता क्या है, अगर आप घर में मंदिर में क्लास अगर होता है और ये मेरे ऑफिस जाना था, ये काम है, ये बिल भरना है, कोई बहाना करके घर के काम इधर उधर एक्सक्यूज ले करके अब नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो घर द्वार सब छोड़ कर आए, नो ऑप्शन, कोई जाने का उपाय नहीं कहे, आप यहाँ बैठना है, कहाँ जाएंगे, बस वही खड़ा रहा, तो देयर इज नो चॉइस, नो ऑप्शन, अब बैठ करके सुनना ही हो और कहाँ जाना है? तो इसीलिए ये सुनने के एक विशेष योजनाबद्ध ये किया जाता है यात्रा में, तो इसलिए यात्रा में आने से विशेष सुविधा है कि यहीं पर बंद होकर के सुनना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, कहाँ जाए, जा नहीं रहे, प्रोग्राम ऐसे कर दिए, सुनना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार इस यात्रा में इस भगवान के राम की स्थली मुख्यतः जो ये पूरी यात्रा इस साल की जो यात्रा आप रखे हैं ये भगवान राम के लीला स्थलियों की है, जिसके आप प्रयाग से शुरू किए वो भी भगवान राम, भगवान राम के समय भरद्वाज आश्रम था, यहाँ तक कि 5 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे तभी भरद्वाज आश्रम का नाम निशान में नहीं था, कहो भरद्वाज टीला अभी भी स्थान है, यहीं थे भरद्वाज, अब कैसा था कुछ नहीं पता, रिक्शा वालों की अड्डा स्थली बन गया भरद्वाज, तभी भी था, तभी भी भरद्वाज जी के नाम गाँव की नहीं था, कोई नहीं जानता, तो इतने बड़े बड़े महापुरुष ऋषि युग में थे, युगान्तर ऋषि सब तो ये भगवान राम की स्थली था, तभी जवान में भगवान राम इस स्थान में आते थे। मैं परसों जब आ रहा था लखनऊ से, आते समय रास्ते में बोल रहा था, बोले आप लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, आपको पता है भगवान राम ने कहाँ पर गंगा पार किए थे जो हमारे साथ आते थे? बोले हम ये लोकल हैं। बोले मैं तो इलाहाबाद में रहने वाला, अभी लखनऊ आके रहा। मैं उनको पूछा, वो भी नहीं जानते। यही है हम लोग का। भगवान ने, भगवान की जो पदांकित भूमि, जिस घाट पर भगवान ने पारी किए थे, जिस पेड़ पर बैठे थे, जिस स्थान पर चल कर आए थे, ये हमारे लिए कितने इतने हो। लेकिन कोई कोई अगर अमिताभ बच्चन आकर गया होगा वहाँ जाना होंगे, भगवान राम आकर गए, सीताराम वहाँ पारी किए, यहीं पेड़ के नीचे बैठे थे। ये सब जो भक्त हैं उन्हीं को तो ये सब ढूंढने को देखेंगे, इसके लिए देख करके कैसा स्थान था, एक समय था जहाँ पर जो गंगा पार कर रहे थे, माता सीता गंगा जी को देख करके वंदना की थी, प्रार्थना की थी, प्रणाम की थी, पूजा की थी उनकी, कि हे गंगा माया मैया, भली प्रकार से मेरे प्रभु के जो ये दंड दिया गया है 14 साल के वनवास, भली प्रकार से पूरा हो। हम अगर भले भले वनवास पूरा करके आते हैं तो मैं आपको पूजा करूंगी, अभी तो पूजा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तब विधिवत पूजा आपको करूंगी। इस प्रकार मनोती मांगी थी गंगा देवी को देख करके। मैं कल जो गंगा के पास खड़ा होता था, एक समय था भगवती सीता गंगा जी को देख कर इस प्रकार मानसिक कर रही थी, आज हम लोग देख कर क्या कर रहे हैं, मुझे बोट में जाकर ना ऐसे ना। देखिए क्या भावना, किस प्रकार भावना होना चाहिए गंगा देवी के प्रति, है ना। तो इस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति, भगवान जब सीता देवी तो इसी पूजा की भावना से की, भगवान राम अब विश्वामित्र मुनि को पूछने लगे, बोले गुरु जी मुझे गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताइए, गंगा अवतरण में कहानी पूरा सुनाना पड़ा हूँ। ये भावना है, ये भगवत भावना, ये सब भावना भक्तों के अंदर होना चाहिए, यही सोच होना, दिस शुड बी द कॉन्शियसनेस, ये होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस स्थली को आकर के जो भगवान के उत्प्रेत जो लीला स्थली जिस जगह में आकर के यहाँ पर इसी को सब देख कर उद्दीपन भाव होना चाहिए, ये भाव उदय होना चाहिए इस स्थली। तो इसी स्थान में आकर के भगवान में अनेक प्रकार के लीला विलास करते हैं, और यहाँ तक कि जो यहाँ के ने बताया कोल बिल जो थे वो तो भगवान के भक्त हो ही गए, उनके साथ ही उनके साथ रूप रहने लगे, उनकी सुरक्षा में उनके सब सेवा करने के लिए, यहाँ तक कि जो पक्षी पशु वो लोग भी आते हैं, क्योंकि भगवान सभी का है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु आते तो सारे पशु पक्षियों को नचाए, तो सभी के अंदर, क्योंकि प्राणी तो है ना, भगवत चेतना सभी के सुप्त हो जागृत सभी के अंदर है, तो इसलिए सभी आकर जो भगवत दर्शन करते हैं, भगवान को दर्शन करके सब सुखी हो जाते हैं, सब तृप्त हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, सब रहते हैं, मन में सब यही विचार करते हैं कि हमारा हो भाग्य आज साक्षात परम पुरुष भगवान हमारे जंगल में आकर हैं, विराज करते हैं, हम उनके देख दर्शन कर पाते हैं। इस प्रकार सुख प्राप्त होते थे सभी पेड़ पौधा लता पता पशु पक्षी सब यहाँ पर रह करके, तो उनके सेवा भी सभी करते थे। यहाँ के बनानी, यहाँ के फूल पत्ते, जब भगवान चाहते थे मुझे ऐसे फूल मल्लिका के फूल चुनना चाहता हूँ, सारे मल्लिका के फूल अपने पूरे जोश लगा कर फूल खिल उठते थे, जिसको भगवान सीताराम तोड़ करके अपने काम लगाते थे, सेवा में लगाते थे। कोई फल खाना चाहते थे, पेड़ सारे फल उगा कर देते थे, पूरे भगवान की सेवा करने के लिए उन्हें मौका मिलता था। यहाँ तो कोई ये नहीं था, तो इसलिए भगवान तो किचन नहीं था कि बनाकर खाएंगे, तो इसलिए प्रकृति इस प्रकार भगवान की सेवा करती थी सारे प्रकार से। इस प्रकार यहीं पर विशेष करके जब भगवान ने आ गए अयोध्या से, तो आप सभी जानते हैं, अब अयोध्या जब जाएंगे परसों तो वहाँ सुनेंगे, अयोध्या से जब भगवान राम निकल के आ गए वनवास लेकर के, तो उसके बाद में दशरथ निधन हुआ। भगवान दशरथ शायद ही 3-4 दिन वो रुके हुए, 3-4 दिन के अंदर उनके प्रयाण हो गया, परम धाम प्राप्ति हुआ उनका, जिनका 4-4 पुत्र थे, और एक एक पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं, एक एक भगवत पुरुष थे। आज अंतिम समय में कोई नहीं था उनको पानी देने के लिए, हाहाकार करके हराम हराम करके दशरथ महाराज शरीर छोड़े, इस प्रकार दुख में। तो बाद में उनको तैलपात्र में रखा गया, तब भरत जी को लाया गया, भरत जी, अब वशिष्ठ जी ने इमीडिएट मैसेज भेजे कि जाओ जैसे भी स्थान से इमीडिएट भरत जी को लेकर के आओ। वो जो पूछेंगे क्या घटना कब जाए, बोले नहीं ये गुरु जी का आदेश थे, कोई नहीं बताया जाएगा, आप चलो इमीडिएट। इमरजेंसी मैसेज लेकर उनको बुलाए। कहते हैं कि भरत जी का जो मामा का घर था वो लगभग अफगानिस्तान में था, काबुल कंधार कहीं मिडिल ईस्ट में कहीं था। मिडिल ईस्ट से उन्होंने आए, अब समय तो लगा होगा तभी, पता नहीं बाय रोड भी आए उन्होंने, घोड़ा में आए, बाय रोड में कनेक्शन है मिडिल ईस्ट को, बाय रोड उन्होंने आए। आकर जब पहुँचे अयोध्या प्रवेश किए, जिस अयोध्या जहाँ युद्ध संभव नहीं था, इतने सुश्री जहाँ हमेशा रहता था, आज इस अयोध्या को देखकर भरत जी रो पड़े। उनका मन तो शंका तो होता था, अपशकुन देखते थे, लेकिन आज अयोध्या के रूपश्री देख कर के रोने लगे कि ये क्या हो गया, आज तो अयोध्या पूरा सूखी गई, उजड़ी हुई है, बिगड़ गई है। इस दशा को देखे अयोध्यावासी लोग जो भरत जी को कितने सम्मान करते थे, कितने उनको पूजा भक्ति भाव करते थे, आज कुमार भरत आए देख करके ओ आ गए, मुंह मोड़ के चले गए, उनको मुंह नहीं देखना चाहते, जिनके कारण प्रभु राम छोड़ के चले गए, यही राजा बनना चाहता, उन्हीं का है कोई मतलब, उन्हीं के माँ ने सब करा है, वो आ गए राजा, अभी आ गया, देख उनका मुख देखना नहीं चाहे, मुंह मोड़ के चल भी हट गई। कुमार भरत को लगा ये क्या हो गया, मुझे कोई देखना ही नहीं चाहे, बड़े विषाद होने लगा मन में उनका, बड़े दुख होने लगा। और उन जब घर में प्रवेश करते हैं, आ करके सबसे पहले पिताजी के घर को दौड़ते हैं, पितृभक्ति थे, पितृभक्त थे, दौड़कर पिता घर देखते हैं, वो तो सुनने हैं कुछ हो नहीं, क्योंकि उनको डेड बॉडी को अलग जगह पर तड़ पात्र में रखा गया था, कुछ मिले नहीं, अब क्या बताएं, इधर उधर कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान। तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं थे, कुमार भरत आज आए राजभवन में, कोई नहीं थे, तो कम से कम मंथरा और कैकेयी दोनों आरती प्लेट लेकर के आए थे उनको स्वागत करने के लिए। तो स्वागत को आए भरत कुमार और शत्रुघ्न पूछे, माँ पिताजी कहाँ हैं, बड़े आवेग भरा शोर से पूछे पिताजी कहाँ हैं। तो कैकेयी बुद्धि जिसका कुसंग जो होता है, बुद्धि इस प्रकार खराब हो जाता है, कुसंग से इस प्रकार खराब हो जाता है, उन्होंने इसलिए बोल दी नीलज हो, कोई शर्म नहीं लगा, बोल तेरे पिता तो गए, वो तो स्वर्ग चले गए, सिधार गए। ओहो यही है कुसंग की प्रभाव। आपको शायद पता भी होगा, जिन माता का कई ऐसे वर्णन मिलता है, भगवान राम माता कौशल्या के स्तनपान इतने नहीं किए हैं जितने कैकेयी की स्तनपान, कैकेयी की पाल्य पुत्र की तरह ही थे, बल्कि कैकेयी माता भरत से ज़्यादा भगवान राम को आपने पुत्र करके मानते थे, इतने प्रेम उनके संबंध था, जिनका भगवान के प्रति इतने रतिमति था, भगवान के प्रति इतने आत्मीयता, इतने रतिमति था, इतने मानते थे भगवान को, अपने पुत्र से ज़्यादा मानते थे, केवल इतना नहीं परम पतिव्रता भी थी, इसी के कारण उनके पतिव्रता के कारण ही दशरथ महाराज आज इस सुसंवाद लेकर के कौशल्या भवन के सुमित्रा भवन नहीं गए, कैकेयी भवन पहन गए, क्यों, क्योंकि कैकेयी के प्रति जितने दशरथ महाराज का अटैचमेंट था और कोई रानी के प्रति था नहीं, उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि कैकेयी के सिवा सुसुषा में दशरथ महाराज बिल्कुल बस हो चुके थे, वशीभूत हो चुके, इतने महापतिव्रता थी, पति के बिल्कुल अपने बस में करके रखी थी, दशरथ महाराज पूर्ण उनके प्रति स्नेह रखते थे, इसीलिए सबसे प्रथम राम राज्याभिषेक का संवाद सुबह सबसे पहले कैकेयी को देने के लिए स्वयं दशरथ महाराज जा रहे थे, कौशल्या भवन नहीं गए थे, इतने मानते थे कैकेयी। तो जो परम पतिव्रता परम भक्त राम के प्रति इतनी अगाध प्रीति ममता जिसका था, उनका अंदर ऐसे दुर्गुण कैसे आया, कैसे हो सकता है, ये बड़े सोचने लायक बात हम सभी के लिए। इसलिए साधु संतगण जो ही विचार करते, मैं कभी कभी कहता हूँ कि सभी कहते हैं सत्संग सत्संग बहुत महान कृत्य है, बिनु सत्संग विवेक नाना। सत्संग सबसे बड़ा महान कृत्य है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक। लेकिन ये जान लीजिए सत्संग जितना महत्वपूर्ण है, कुसंग कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुसंग भी इतने ही महत्वपूर्ण, बल्कि उनसे ज्यादा, बल्कि उससे ज्यादा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों को शिक्षा देने लगे, भक्तगण पूछते प्रभु अब तो हम जा रहे हैं, कुछ तो बताइए क्या करें, कुछ तो आप फिर जाके एक साल में आपके दर्शन होगा, कुछ तो उपदेश कीजिए। भगवान ने कहा आप सब भक्त है ना, भक्त है हमारे, क्या आचरण क्या काम करें कैसे रहें। भगवान बोले बस भक्तों के लिए आचरण तो एक ही है, क्या है, क्या है बोले, भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, कुलीन राशि भक्तों को महाप्रभु ने बोले असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। वैष्णव के एकमात्र आचरण होना चाहिए, व्हाट इज दिस, असत्संग त्याग। सत्संग करने के लिए थोड़ी बोले, क्या बोले, क्यों भाई, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बैठे हैं और यहाँ कष्ट हो रहा है, गर्मी लग रहा है, तो आप बोले फैन यहाँ चलता है, यहाँ चले जाओ, बोले यहाँ गर्मी लग रहा है ना, ये फैन की साइड चले जाओ, यहाँ ठीक हो जाए, तो मुझे यहाँ चले जाऊँगा, मुझे सुख प्राप्ति हुआ। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँ ना, सबसे पहले जाकर छोड़ो, क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ पहले छोड़ना पड़ेगा फिर जा कर जाऊँगा, इस जगह को ना छोड़ कर यहाँ जा पाऊँगा। तो इसलिए आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले, इसलिए बोले पहले तो कुछ बनना चाहते हैं, पहले छोड़ो तो सही, क्या छोड़ो, छोड़ने के लिए तो असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। जैसे बहुत अज्ञानी पुरुष कई जन्म तक काल तक अज्ञान में भरा पड़ा है, पाप करता रहा है, सब कुछ कहा है, लेकिन कभी कोई संत महापुरुष की कृपा हो जाए, क्षण भर में उन्हें सुधार हो जाएगा, उधार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हजारों साल से इतने भक्ति ममता सब कुछ साधन भजन करने पर भी एक बार कुसंग में भी चौपट हो सकता। संतगण उदाहरण देते, कपट खटाई, क्या बोलते हैं, कपट खटाई है, दूध दूध, आजकल दूध का लीटर क्या है भाव, 46 50 मान लो, वो सही दूध ना भेजा, अच्छा पता नहीं दूध है, व्हाइट मटेरियल है, व्हाइट लिक्विड जो भी हो, वो 50 रुपया का है, लेकिन जो दूधिया है, जो दूध बेचने वाला, वो गया हैंडपम्प से भर दिया, 2 लीटर था उसको 5 लीटर करके ले आया। वो जो चापा कल का पानी, उसका लीटर का दाम कितना है, फ्री है, लेकिन वो दूधिया जो ड्रम भर के ले आया दूध के ड्रम में, अभी वो कितने में बेचेगा, 50 में। वो पानी जो बिना कीमत वाले है, कोई मूल्य नहीं, मूल्यहीन पानी भी आज दूध के संग करके दूध के भाव में बेचेगा, है ना, नहीं मार्केट में, हाँ कोई कीमत का नहीं, बिना कीमत वाला केवल दूध के संग किया, आज इतने संग बढ़ गया, दूध के भाव में बेचेगा, लेकिन दूध खरीदने वाला ला करके उसको आउटेगा, जब आउटेगा गर्म करेगा तब तो संग छूट जाएगा, है ना, संग छूटेगा। अरे संग छूटते छूटते अगर कोई एक ड्रॉप नींबू की रस डाल दे, केवल एक बिंदु, इसको तो कपट खटाई, 1 मिनट में पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, फाड़ देगा, फाड़ देगा 1 मिनट। ये कपट जो खटाई है, इतने शक्तिशाली पावर है, 1 मिनट में फाड़ कर अलग अलग कर रहा है, और फिर इसको सुधार सकते हैं, फाड़ा हुआ दूध को फिर दूध में बना सकते हैं, नहीं, इतने करामत है दुखसंग का, इतने करामत। यही मैं कहता हूँ कि इतने महापतिव्रता, इतने राम के प्रति इतनी ममता भक्ति रखने वाली कैकेयी राजरानी राजपुत्री आज आधा घंटे के मंथरा के संग के कारण फाड़ दी, बुद्धि फट गई, ये हो गया कारण। ऐसे इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुसंग को समझना, उससे बच के रहना, कुसंग से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुसंग है, किस कुसंग से बचें, कैसे बचें, क्या कुसंग है। कम से कम आंखों देखे में तो चार प्रकार कुसंग दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग को बचना पड़ता है, बचना चाहिए। एक कुसंग है व्यक्ति के कुसंग, ऐसे व्यक्ति के संग मत कीजिए जो कु विचारधारा के हैं, कु स्वभाव के हैं, कुकृत्य के हैं, इस प्रकार से बचिए। कु व्यक्ति के संग से प्रथम बचिए, दूसरा कु खान पान से बचिए, इस प्रकार के भोजन से बचिए, क्योंकि भोजन जैसे खाए अन्न ऐसे बने मन, बड़े पावरफुल वो भी, ये भी बड़े दुसंग हैं, ऐसे दुर्भोजन से भी बचिए दूसरा। तीसरा है कु बसन, खराब प्रकार के जो वस्त्र आदि पहनते हैं उससे भी बचिए, वो भी बड़े प्रभाव पड़ता है। हमारा जिस प्रकार के जो वस्त्र आदि पहनते हैं आभूषण, वो भी बहुत भारी प्रभावशाली है, बड़ी कुसंग, उससे भी बचिए। और चौथा है मन की कुसंग, भावना की कुसंग, मन उसको विचार करके देखिए। व्यक्ति के कुसंग, व्यक्ति की तो आप जानते नहीं, वो सु है कि कु है, तो उनको पास अगर बोली निकले तो पता चल जाएगा, कि अगर खान पान से पता चल जाएगा, व्यवहार से पता चल जाएगा, व्यवहार से, खान पान से, बोली से आप सु और कु जान करके उनसे अलग हो जाइए, बस हाथ जोड़ दूर हो जाए तुरंत। ठीक इसी प्रकार भोजन, जब तक हम सही शुद्ध भोजन नहीं करते हैं तो हमारा शुद्धता हो नहीं सकती। भोजन शुद्ध, भोजन शुद्ध कब, आजकल तो बाजार में हरेक चीज डुप्लीकेट है, फल भी सब्जी भी, पता नहीं आप ही सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मुझे कोई बता रहा था दाल भी और चावल भी प्लास्टिक का आने लगा है ना, चावल दाल गोभी बंदा को पत्ता गोभी बोलते हैं, वो सब आ रहा है। अब क्या
स्प्रे होता
है,
स्प्रे
तो इसलिए जब शुद्ध भोजन किसको माना जाएगा, तो केवल ही केवल भारतीय देसी गाय के जो प्रोडक्ट है वही ही शुद्ध भोजन, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई शुद्ध भोजन नहीं, गाय तो रखे नहीं किसी। भारतीय देसी गाय का जो गो उत्पादन है वही शुद्ध है, वही शुद्ध कर सकता है, वही शुद्ध है, शुद्ध कर सकता है, कर सकता है। तीस प्रकार के भोजन से शुद्ध भाव होता है, भजन शुद्धि सप्त शुद्धि, इसमें सप्त शुद्धि होता है, उसको बरतना चाहिए। और तीसरा है कुबसन, इस प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, तड़क भड़क चटकिला मटकिला तक देख करके मन में उपासना का भाव नहीं बल्कि कामना के उद्रेक हो, है ना, भोग वासना के उद्रेक हो, ऐसे भड़कीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ऐसे वस्त्र आभूषण पहनना चाहिए जिनको देखने से मन में उपासना के भाव आ जाए, भक्ति मुझे भाव आ जाए, इस प्रकार। तो हम ही जब ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्या करेगी, हम बदले देश बदले, प्रत्येक व्यक्ति आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को करना चाहिए। भगवान सबको बोले भारत भूमि ते जन्म है लजार, मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ईच इंडियंस चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सभी का ये भगवान के दिया हुआ उत्तरदायित्व तो है कि अपने आप को कम से कम सुधारे। अब दूसरे को सुधार नहीं सकते, राइट टू करेक्ट योर सेल्फ एटलीस्ट, अपने आप को सुधारो। सही खान पान, सही वस्त्र आभूषण और सही संगत में रही सही कार्य। अंतिम कुसंग है विचार का कुसंग। आप किसी को दोष नहीं देख सकते कि ये व्यक्ति ने खराब है, इसके संग छोड़ दिया, ये भोजन खराब है, ये वस्त्र खराब है, किसी को अंगूठी उड़ा कर देख नहीं सकते हैं। आपने आपके अंदर विचार ऐसे है, आप अलग से अकेले में बैठे हैं, अरे चित्रकूट के मंदाकिनी धारा पर बैठे हैं, अरे उत्पटांग विचार मन में आ गए, बड़े पापी अन्यायी उत्पटांग विचार आ गए। अब किसको दोष दें, किसको दोष देंगे, है ना? नहीं, एकांत में बैठे हैं, बहुत पवित्र स्थल स्थान पर बैठे हैं, लेकिन वो आ रहा ना नहीं अंदर, बड़े खतरनाक। इसके लिए किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं। आपके अंदर ही वही उठते आपको पागल करेगा, तो उसके सुधार कैसे होगा, इसी संगत से कैसे बचे, है उपाय आपके पास? इस रोग से सभी पीड़ित हैं, इससे बचने के क्या उपाय है? इससे बचने के केवल तीन ही उपाय, इस तीन उपाय से बचना क्या है? साधु संत के संग करके उनसे श्रवण करो, स्वाध्याय करो, श्रवण स्वाध्याय और मनन, ये तीन ही ऐसी एक महा अकाट्य उपाय है जिसमें विचार शोध होता। हम तो सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद कभी उसको मनन नहीं करते हैं। ये कान में घुसा और ये कान में निकला, ये महावैराग्य ऋणाम सड़क कहा किसी चित्रकूट के बाद चित्रकूट छोड़ कर आएंगे, घर क्यों लेकर आए, घर के बाद कहीं छोड़ कर, कहीं कहीं छोड़ कर, हम किसी के दूसरे वस्त्र लेते हैं कहीं छोड़ दे। तेई से वैराग्य मत बनिए, इसको इसको रखिए इस चीज को, तो इसको मनन, तो फिर श्रवण स्वाध्याय और मनन, इस तीन को बारंबार हम करेंगे तो ये जो विचार के सुधार के कुसंग उससे बच जाएंगे, इसके बचेंगे, तब जा करके हम सत्संग कर पाएंगे, ये तीन चीजें। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार से कुसंग से बचना, जब तक हम कुसंग से बचेंगे तो भगवान लीला को सुनने के लिए श्रवण के लिए देखने के लिए योग्यता भी हमारे पास है, कहा योग्यता भी है। भगवान राम को अगर अपना करना चाहते हैं तो ये सब आवश्यक, कूट कपट छिद्र ये सब स्वभाव जिसका नहीं होगा, राम तो उनके ही होते ना, तो ये जब तक रहेगा तो कैसे। इस सब के इस प्रकार श्रवण और मनन करके उसको धीरे धीरे संत के संत में बैठ करके उनके साथ बैठ कर विचार विमर्श करके सुन करके उसको त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके इसका आस्वादन कर पाएंगे इसी धाम की। तो इस प्रकार कई कई माता देखते हैं किस प्रकार मंथरा के संग से किस प्रकार दुर्विचार दुर्भावना आया और जिनके कारण अब क्या ना क्या हो गया, पति भी गए, पुत्र भी गए, राज्य गया, पुत्र गया, सब कुछ उजड़ गया, केवल एक आधा घंटा के एक दुष्चरित्र वाली स्त्री का संग कर, क्या परिणाम है ना? किसी ने मुझे कुछ दिन पहले पूछ रहा था, बोले उसमें किसको दोष दिया जाए, कैकेयी माता तो अच्छी थी, उनके हिसाब से देखा जाए शिवाज वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी इंपोर्टेंट, कोई प्रकार निर्दोष थी, कोई कोई दोष थी नहीं, तो दोष क्या थी, किसका दोष थी, कैकेयी तो थी उनके राजभवन में, मंथरा भी तो पहले थी, वो नया थोड़ी गवर्नमेंट सर्वेंट थी पहले से, उनका क्या? आपको पता है जब मंथरा ने सबसे पहले आकर देखा भगवान राम के राज्यास्व की तैयारी हो रहा था, वो देखी, देख करके तो सहन नहीं कर पाई उनको, बाकी जब सारे सुखी हो रहे थे वो दुखी हो गया। मैं आज बता रहा था ना सुख सुहेल, सबका जब सुख होता है वो दुखी होते हैं, हम जैसे दुखी हो तो दुखी हो गए। दुखी होकर के क्या बताए, दौड़ करके आई तो कैके की दासी थी, तो कैके की पास आई, आ करके कैके को मोड़ करके बोले, अरे तुम बैठी तुझे अब तक पता नहीं क्या? ना क्या बताऊँ, अभी देख रहे ना क्या, तो बताने लगी कि मैंने देख कर सुन करके वो राम की राज्याभिषेक की चल रहा है तैयारी। जिस ये बात को सुनी मंथरा के मुख से माता कैकेयी ने, बोला मंथरा तो सच बता रही है, अगर ये बात सच है तो मैं डायमंड नेकलेस हीरे के जवाहरात के हार निकाल कर दी, बोली गिफ्ट दे रहा हूँ तुझे लेकर, अगर राम का राज्याभिषेक तो सबसे ज़्यादा मैं ही खुशी होंगी। ये हार लो तो मंथरा तो बोला मर गई क्या करूँ। मंथरा का रोल दिखे ड्रामा देखिए, उन्होंने बोली हाय हाय मैं क्या करूँ, मेरा ये स्वभाव भगवान ने क्यों दिया, ना क्या ना मैं तेरे अहित कभी देख ही नहीं सकती, मेरे से हो ही नहीं सकता, तेरा कभी अहित होगा मैं देख नहीं सकती, तू इतना मूर्ख भी देखती नहीं है, तो समझ में नहीं आती, अज्ञानी हो, घर बैठे रहे सोती रहती हूँ, मैं तो दुनिया में घूमती रहती हूँ, ड्यूटी में हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, मेरा क्या हो जाएगा। अरे राम राजा हो जाएंगे, भरत तो जेल में जाएगा ही, मरे गया जेल में जाएगा, अब तू तो नौकरानी बनोगी, मेरा क्या था, मेरा तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरा क्या, मेरा प्रमोशन में देखू ही हूँ, मेरे दासी रहूँगी दासी भी रहूँगी, मेरा क्या हो जाएगा, चाहे वो राजा बने चाहे वो राजा बने, मुझे तो कोई फर्क होने वाला नहीं है, तो फिर तेरा क्या हो गया ना, मेरा तो यही कुछ स्वभाव है कि मैं तेरे अहित देख नहीं सकती, बाकी दुनिया में भाड़ मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तुम्हारा कुछ अकल्याण हो जाए मैं सहन नहीं कर सकती, यही दुख है। ऐसा ड्रामा देख करके कौन नहीं परिवर्तन होगा बताओ, कौन नहीं परिवर्तन, क्या ड्रामा है देखिए उसका, बोला मैं तेरे अकल्याण देख ही नहीं सकती, तो कौन ऐसे पुरुष होगा जो बोले अरे इतने ही तेजी में रहा है इतने बोलो ईश्वर में रहा है, बाप रे बाप, बोलता हाँ पता नहीं लोग झूठ कैसे बोलते हैं, बहुत प्रयास करता है झूठ बोलने के लिए, हो ही नहीं सकता, झूठ बोलता नहीं, झूठ का लोग कुछ नहीं बोलता झूठ बोला नहीं जा सकता, मैं ऐसे ड्रामा करने लगी तो कहके माता फंस गई, बुरी तरह से फंस गई, जो इतने प्रसन्न हो रही थी कि राम के राज्याभिषेक बात सुन करके आज इतनी बदल गई, इतने तोड़ मरोड़ कर दिखवा कर, तो यही है कैके की अपना स्थिति थी, कैके लोग बहुत होते हैं आज भी, कैके चरित्र वाले लोग बहुत होते हैं ऐसा बात नहीं, और आज भी मंथरा चरित्र वाले भी कुछ कम नहीं है, लेकिन गड़बड़ी यही है कैके मंथरा का मिलन नहीं, उनके ऊपर जो ड्रामा का जो विश्वास कर लिए वही नहीं, और उसी समय विश्वास नहीं करती अपने पति के ऊपर अविश्वास कर ली, विश्वास हटा दी, राम के ऊपर विश्वास हटा दी, कुशल्या के ऊपर तो विश्वास चलो सब पत्नी नहीं हटना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पति पुत्र के ऊपर भी इस विश्वचरित्र एक नौकरानी की बात में आकर, तो इस कारण से जब भरत जी आए बड़े दुख हुआ उनको, माँ को तो उसी दिन त्याग कर दिया, माँ कहना त्याग करके उन्होंने बड़े दुख किए, वो तो मंथरा आ गए आरती उतारने के लिए, भरत जी रो रहे थे, माँ को फटकार रहे थे, शत्रुघ्न ने गुस्सा में मंथरा को देख करके एक लात मारी, उनके कोड़ गायब हो गया, ऑपरेशन हो गया उसका बिना हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो गया उनका कल्याण हुआ, वो फोन जाकर के सर्जरी करता प्लास्टिक सर्जरी काट कर उसको मेकअप करता, वो एक खींच में उड़ गया कोड़ उसका वो तो मूर्छित होकर पड़ा, उसको खींच रहा था और मारने के लिए, लेकिन भरत आकर पकड़े, शत्रुघ्न रुक जाओ ये तो मारने से भी उसका दंड पूरा नहीं होगा, पदाघात करके जीवन में उसको मार लो फिर भी उसके कम है दंड, उसको मार फायदा क्या, ये इस दंड तो कुछ ही नहीं है, मृत्यु दंड उसके लिए, लेकिन उसको अगर मार दोगे हमारा बड़ा अपकर्म हो जाना। क्या ना, अगर आप तो मार दोगे मंथरा को तो इस जीवन में भगवान राम के दर्शन नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले भगवान राम को मैं जानता हूँ, उनके स्वभाव को मैं जानता हूँ, वो निश्चित रूप से कहे तो स्त्री हत्यारा है, चाहे मंथरा हो चाहे कैकेयी हो चाहे कोई भी हो, एक स्त्री तुमने हत्या किया, मैं तेरा मुंह नहीं, ये मेरे अग्रज राम के स्वभाव, इसलिए उनको छोड़ दो, नहीं तो हमारा राम दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे कह करके छोड़े, कौशल्या के पास जा करके इतने माफी मांगे, 100 कसम खाना पड़ा, 100 बार कसम खाना पड़ा, यहाँ तक कि कौशल्या माता को कुलाग्रत करके शपथ खाग्र करना पड़ा, भरत मैं गलत, मुझे माफ कर दो, मैं गलत भावना था, तेरे मन में कभी हो ही नहीं सकता, तो साक्षात राम भक्त हो तो निश्चित रूप से इसे मानना पड़ा, कौशल्या माता कसम खा, सबको मना करके। अब वशिष्ठादि ऋषि आ चुके थे, पितृ श्राद्ध करना था, पितृ के अभी 13 भांडव थे, पिताजी के अभी दाह संस्कार ही नहीं हुआ, उनके दाह संस्कार की क्रिया हुआ, बड़े राजकीय विधि विधान के अनुसार बड़े भव्य रूप से चंदन घी आदि लेकर के उनके राजस की संस्कार किया गया, सभी संस्कार पूरा तूट श्राद्ध पिंडदान 12-13 दिन के सब करने के बाद में, अब 13 दिन के बाद 14 दिन में सबसे पहली बार इतने दिन के बाद अयोध्या की पुरी में पहली बार राजसभा पुनर्व्रात आहूत हुआ, राजसभा बैठा, और वशिष्ठ वामदेव जावाड़ी आदि बड़े बड़े मुनि ऋषि और पूरे बड़े बड़े सब पाठ महंत और जो मठाधीश पीठाधीश बड़े सब सेठ साहूकार सब आकर बैठे, प्रजा वर्ग सब बैठे, 3 रानी आकर बैठी, सब बड़े बड़े राज कर्मचारी आकर बैठे, और सभी के बीच में भरत शत्रुघ्न पिलाकर बैठा गया। विशेष सभा में विचार विमर्श होने लगा, जिसमें वशिष्ठ आदि ऋषि गुरुवर्ग उन्होंने सब बोलने लगे। सबसे पहले वशिष्ठ जी बताए सब सभा को एड्रेस करके, जो हो गया जैसे होना था हो गया, ऐसा विधि के विधान है, और महाराज स्वयं तो इंद्र के आधे आसन में बैठते थे, इतने बड़े पुण्य की भागी, जीते जी जब जीवित थे तभी स्वर्ग में आधा आसन में बैठते थे, जीवित कोई स्वर्ग आसन में नहीं बैठता, दशरथ महाराज बैठते थे आके आधा आसन में, तो इतने बड़े पुण्य की भागी दशरथ महाराज, वो तो स्वर्ग पधारे, लेकिन जाते समय उनका जो अंतिम इच्छा था कि उनके बड़े पुत्र को वनवास दिए और आपको राज्य दिए, उनका अंतिम इच्छा ही था कि भरत कुमार आप राज्य स्वीकार कीजिए, अभी अराजकता छा गया है, कोई राजा नहीं है, अयोध्या उजड़ा हुआ है, इस प्रकार हालत में आप सभी अघटन हो रहा है, आप निश्चित रूप से राज्य संभालिए, राजा बनिए, सभी प्राप्त कीजिए, हर प्रकार से बड़े लंबा विस्तृत प्रवचन दे करके भरत को एनकरेज की प्ररोचना के प्रेरित किए कि राज धारण करने के लिए राजा बनने के लिए। और विश्वामित्र जी की इस बात को उपस्थित सारे ऋषि वर्ग ब्राह्मण वर्ग मंत्री पारिषद वर्ग समन्तादि मंत्री और हितैषी वर्ग सारे बड़े बड़े प्रजा मंडल अधिकारी सारे लोग समर्थन किया, हाँ हाँ बिल्कुल सही, यहाँ तक कि तीनों रानी उठ करके भी माने बोले हो, अभी इस अवस्था में तो कोई संभालने वाला हो, बिल्कुल अराजकता व्याप्त हो रहा है, कोई नहीं है संभालने वाले, तो कुमार भरत आप पूर्ण समर्थ है, शक्तिशाली है, और आप ही संभालिए, महाराज का भी अंतिम इच्छा ही था आपको राज कर गए, और राम भी जाते समय बोले कि भरत कुमार राज्य देना बोल कर, तो इसलिए सभी का इच्छा गुरु जी की इच्छा अयोध्या से राज चाहता है, सब प्रकार से हम चाहते हैं कि आप राज करें, ऐसे बोल करके सारे आदेश हुआ विचार, बड़े लंबा सभा हुआ, सब आशा करते हैं कुमार भरत उठ कर स्वीकृति दे राज संभाले, भरत तभी तक रोहित है थे, सभा चल रहा था, वार्ता हो रहा था, सभी का प्रवचन चल रहा था, भरत केवल शुरू से अब तक रोही रहे थे कंटिन्यूअस, अब जब बारी आया सभी ने उनकी ओर देखने लगे, कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो, तो भरत उठे, उठ करके सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे, विशेष करके गुरु जी को माफ़ी मांगे, बोले गुरु जी क्षमा करना, आज तक जब तक मेरे से जीवा प्राप्त हुआ आज आपके सामने कोई उत्तर नहीं दिया हूँ, लेकिन आज बोलने जा रहा हूँ, विवश होकर के, आप ही ने विवश कर रहे हैं इसलिए बोलने जा रहा हूँ क्षमा करना। तब बोलना शुरू किए, बोले हे गुरुजी, हे मेरे मातृवर्ग, हे मेरे पितृव्य वर्ग, गुरुवर्ग, राजन्य वर्ग, प्रजावर्ग, आप सभी चाहते हैं कि मैं राजा बनूं। वो इसलिए बड़े लंबे प्रकार से बहुत प्रमाण शास्त्र के साथ दे करके मुझे राजा करने के लिए प्रमाण करके दिखा दिए, लेकिन क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके उपदेश, क्षमा करना है, उपदेश मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सुग्रहण करने के लिए मैं आपको युक्त युक्त नहीं मानता। क्यों, मैं एक बात कहता हूं गुरु जी, आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति को ग्रह दशा लगा, ग्रह दशा समझते ना, राहु शनि लगा हुआ है, बोलते ना अभी 11 साल का है, शनि महादशा है, वो उल्टी राहु दशा, शनि और राहु दोनों लग गए, बड़े भारी खराब समय चल रहा है, वो 11 साल तक चलेगा, किसका लग रहा है क्या, नहीं ना, तो लगा है 11 साल तक चलेगा, पूजा वजह से इतना अंगूठी 2-4 बना हुआ है, तो एक तो ग्रह दशा बहुत खराब चल रहा है, उसके ऊपर में उनके जो संबंधी साथी लोग हैं हितेशी, वो भी उनसे दूर हो गए हैं, उनको अकेला छोड़ दिए, से दूर अलग हो चुके हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा। तीसरी अवस्था में, इस अवस्था में उसको एक भूत सवार हो गया, क्या हुआ है, एक भूत सवार हो गया, भूत सवार होने से क्या होता है, किसको हुआ है, एक्सपीरियंस है किसका, नहीं पता नहीं, देखे भी नहीं कोई, देखे है ना कैसा होता है, जैसे बुरी हाल होता है, भूत की भाषा बोलेगा, भूत की जैसा खाएगा, भूत की जैसा व्यवहार, ऐसे भूत जैसा भूत सवार। ये 4 के ऊपर पांचवा क्या हुआ है, ऐसे ग्रह दशा हितेश लोग छोड़ चुके हैं, इसी ऊपर से भूत सवार हो चुका है, इसका ऊपर में कहीं जा रहा था, इसे भूत पागल की तरह घूम रहा, भूत सवार उसको जो एक होता ना बिच्छू, बिच्छू होता ना बड़े पावरफुल बिच्छू, बिच्छू डंक मारा है नीचे से, कहीं जा 10-5 बिच्छू डंक मारे हैं, उससे दौड़ कर आ रहा था कि मधुमक्खी, जो जंगल के मधुमक्खी छता डिस्टर्ब हुए, वो ऊपर से मधुमक्खी मारे, ऊपर से मुख के ऊपर मधुमक्खी के क्या बोलते हैं, उसमें इंजेक्शन लगा है, नीचे से बिच्छू के डंक लगा, वो तड़प रहा है, क्या क्या हुआ है उसका, सबसे पहले तो ग्रह दशा बुरी तरह से 2 ग्रह खराब करके डाल रखा है, सब प्रकार से खराब, और जो हितेशी लोग छोड़ चुके हैं, तीसरे भूत सवार हो चुका है, चौथे में घूमते घूमते उनको बिच्छू डंक मारा है, ऊपर से मधुमक्खी ने काटा, इस प्रकार पीड़ित और यंत्रणाग्रस्त अवस्था में है, इस प्रकार विचलित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, तड़प रहा है दुख में, आप जैसे सहायक करना, आहा बेचारा कितने दुख हो रहा है, क्या करे, मदद करने के लिए वो बड़े उत्कट शराब लेकर आए, शराब पी लो ठीक हो जाए, ठीक होगा ना, अच्छा है ना, ऊपर उसके ऊपर शराब लाया पिलाने के लिए, सब आश्चर्य होकर सुन रहे थे भरत का प्रवचन, आश्चर्य होकर सुन रहे थे, बोले क्या तुम्हारा भरत ना, ठीक मेरा ही दशा है, मेरे सबसे बड़ा बुरी ग्रह, मेरा साक्षात जननी जन्मदाता माँ कैकेयी, ये मेरा बुरी ग्रह बन गया, अब उनके साथ मंथरा साथ दे, ये मेरा महादुर्भाग्य है, उसके ऊपर से परम हितैषी भैया भाभी पिता वो भी छोड़ के गए मुझे, देशवासी अयोध्या उजड़े हुए बिगड़े हुए मुंह नहीं देखना चाहते मेरा, संपूर्ण श्री सौभाग्य श्रीहीन हो चुका है ऊपर से नीचे तक, पिताजी के संस्कार करके आया, कभी क्या हुआ, इस दशा में मैं जैसे पीड़ित भरत को आप लोग राजगद्दी में बिठाना चाहते हैं, शराब पिला देना चाहते हैं, ठीक हो जाएगा, उचित है ये, सारे सभासद ऊपर से नीचे तक गुरुवर्ग से प्रजावर्ग तक स्तब्ध निरुत्तर हो गए। पहले बार महामुनि वशिष्ठ हाथ जोड़ दिए, बोले भरत आज मैं हार गया, आज मैं हार गया। समस्त वेद विधि वैदिक ग्रंथ को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, उसमें निष्णात हूँ नीति में सब कुछ, लेकिन आज आपके साथ में निरुत्तर हूँ, मैं हार गया। मेरे सारे इतिहास वेद पुराण के युक्ति युक्त प्रमाण अकाट्य युक्ति सब आपके सामने हार गया, मैं हाथ जोड़ दिया। आप जो कहता है सही, आप बताओ क्या, आप जो बताओ वो करे। हम सभी ने हाथ उठा दिए, मातागण हाथ उठा दिए, पंडित विप्रवर्ग हाथ उठा दिए, राजपुरोहित मंत्रीवर्ग पारिस सब हाथ उठा दिए। भरत जो कहते हैं आप, बिल्कुल सही बात। भरत जी बोले कि अगर मैं राजा हो जाऊं क्या आप खुशी हो जाएंगे, अयोध्या का श्री सुधर जाएगा, अगर मुझे अब राज पद दे देंगे आज ही नरक में चला जाएंगे हम लोग। बोले ठीक है, अभी आप जो कहेंगे समान, आप जो कहेंगे सब मानेंगे। बोले आप कहो, आप कहिए क्या करूं, हम मान गए गलती हमारे। वशिष्ठ तक हाथ जोड़ दे, बोले गलती हो गया, मेरा सारे शास्त्र युक्ति फिर मार गया आज, आप बताए क्या करूं, क्या करना है। देखिए जहां प्रीति होता है, प्रीति के सामने नीति नहीं टिक सकता। नीति तभी तक चलेगा जब तक प्रीति नहीं होगा, प्रीति होगा तो फिर नीति का स्थान खत्म, वो नहीं टिक सकता। तो ये शास्त्र नियम कब तक चलेगा, जब प्रेम नहीं है तब तक, जब वो हो गया फिर शास्त्र नियम क्या। इसलिए वृंदावन में गोपियां सारे नीति नियम को तोड़ दिए, फॉरगेट इट। इसलिए पूछिए, क्योंकि प्रीति की बात यहाँ नीति नहीं चलेगा। तो भरत कुमार उठ करके बोले, अगर मुझे चाहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ, अभी मैंने पिताजी के सारे संस्कार काम पूरा किया, काल ही प्रभात काल से उठ करके भ्राता राम को जाकर बुला कर रहा हूँ, उन्हीं के राज्य वही राजा होना चाहिए, अगर उन्हीं को बुला कर राजा दूँ मैं ही चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं। अरे सब बोले सब बिल्कुल, हम सब चलेंगे, हम सभी चलेंगे, आप चलेंगे चलेंगे एक साथ में, सब अपुल्ल हो गए। बोले सब चले, काली सुबह चले, आज ही चल देते विदाउट रिजर्वेशन, चले सब तैयार हो गए चलने के, पुरुष स्त्री राजा प्रजा सब राज्य हो गए चलने के लिए। कोई बोले हम कर, हम सब चलेंगे, ये सब पता कर मना कर लाएंगे, बोले आप नहीं चलेंगे हम जंगल में रहेंगे, कोई नहीं जाएंगे वापस, समझ गए तैयार हो गए सब जाने के, तैयार हो गए। सुबह हुआ सब, तो भरत जी से होने से पहले ही सब तैयार हो गए थे, इतने सब पसंद आया बात ये सुझाव। अब भरत जी बोले नहीं अभी इतनी जल्दी क्यों, बोले राज्य मेरा नहीं है, किसका है, हम भाई राम का, तो उनका राज्य हमसे छोड़कर चले जाएंगे, आज को उजड़ जाएगा, आज को उच्च के चोर आएंगे लूटपाट हो जाएगा, तो खजाना तो भैया मुझे डांट देंगे, बोले तेरा बाप का है जैसे क्यों क्या दूंगा। तो इसलिए पराया धन पराया खजाना को जब मेरे जब तक हैं तब तुम देख रहे हो करके मैं व्यवस्था करके जाऊंगा, तो सबसे पहले व्यवस्था किए उचित सुरक्षा की व्यवस्था करके फिर जाकर निकले। निकले माताओं के लिए पालकी था, बड़े बड़े सब सीनियर लोगों के लिए व्यवस्था था, गाड़ी घोड़ा सब रथ रथ था, रथ भरत जी चल के चलने लगे। भरत चलेंगे तो बाकी कैसे सब गाड़ी में चलेंगे, सब गाड़ी से उतर पड़े, बोले हम लोग नहीं चल रहे, हम सब चल के जाएंगे। कितने एक दो किलोमीटर चल के जाने के बाद थक के मानने बोले रोने लगे, बोले हम चल के नहीं जा सकते, और किसी गाड़ी में चढ़ने के वो नहीं जा रहे, हम किसी जाएंगे। तो अंततः जा करके माताओं को बोलना पड़ा, सभी लोग को जाकर उनको समझाओ ये गाड़ी में चले। बोले क्या समझा है, बोले एक पॉइंट बताओ मान जाएंगे ना क्या, ना जाकर बताओ कि रे भरत बेटा भरत, तू अगर पैदल चल के जाएगा तो कितने दिन लगेगा, भगवान राम के पास आएगा ना, उनको जल्दी बुला कर लाएगा ना, तो गाड़ी में जल्दी जाए ना, किसी गाड़ी में बैठ, ये पॉइंट में भरत राजी हुए, नहीं तो गाड़ी में नहीं बैठते। बोले भैया राम के पास जल्दी जाना है, नहीं तो दूर चले जाएंगे। हाँ जल्दी चले, तो बेगामी शस्त्रों में बैठे उन्होंने, तब जाकर जिनका मन प्राण केवल राम में रम रहा था, कोई पॉजिटिव पॉइंट मिला इमीडिएट एक्सेप्ट, बेगामी को स्वयं बैठे, तब सब अपना अपना गाड़ी में बैठे, तब चले। समुच्चा अयोध्या राज्य चल पड़ा था। अब चलते चलते जब आते हैं, आकर के वहीं शुंगबरपुर आता है, विशाल वाहिनी चतुरंगणी सेना आ रहा है भरत जी के साथ में। तो शुंगबरपुर का जो सवर जो लोग थे, गुहक आदि, उनका जो बीएसएफ थे, बड़ा सिक्योरिटी इशारा दिया, बहुत बड़े वाहिनी आ रहा है, गज हस्ती सब अश्वारोही गजारोही पदातिक, बहुत बड़े सैन्य शक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है? ना भरत जी लेकर आ रहे हैं, छत्र चामर भरत जी का आ रहा है, ध्वजा आ रहा है। अब क्या करेंगे? अनुमान चलने लगा, खूब अनुमान लगा, किस लिए आए, खूब सोच विचार कर अनुमान करके डिसाइड किए, जरूर हो ना हो यही होगा कि एक तो पिताजी तो निकाल दिए, जैसे जैसे प्लान करके तो माँ बेटा बने प्लान करके तो उनको निकाल दिए जंगल में, लेकिन भरत जी सोचे होंगे लेकिन जंगल में जाएगा 14 साल के बाद फिर वापस आ जाएगा, तब तो फिर पक्का तुम्हारे हुआ ही नहीं, तो इसलिए अभी जंगल में है, कोई नहीं हाथ में, अभी उसको खत्म कर देते, फिर निष्कंटक राज्य में रहा, इसलिए सुना लेकर आ रहे हैं उनको, भगवान राम को हत करके राज्य उनका निष्कंटक करने के लिए ये विचार लाए। तो ये विचार सुन करके राम भक्त गुहक बोले, जब तक मेरे शरीर में प्राण हो तब तक भगवान राम के पास उनको जाने ही नहीं दूंगा। क्रोधित होकर खड़े हो, ऑर्डर दे दिए, बोले गंगा में जितने घाट है जितने नाव है सब डुबा दो पानी में, जा। बोले हम जबरदस्ती उनके नहीं कैसे, भरत का सामना करना भारी पड़ेगा, कर नहीं सकते, लेकिन अब पारी कैसे करेंगे, नाव में करेंगे ना, नाव सारे पानी में डुबा दो, खत्म। सब नाव को डुबा दिया गया, कोई घाट में नाव ही नहीं रहा। अब बोले तैयार हो जाओ लड़ेंगे, जो भी जंगली लोग है, जो भी उनका अस्त्र शस्त्र धनु बाण है, बोले कस कर लड़ेंगे, जब तक नहीं मरेंगे, मरेंगे तो राम के लिए मरेंगे, अगर जीतेंगे तो राम के लिए जीतेंगे, मरेंगे तो उनके लिए जाएंगे, राम का आज के लिए तैयार हो गए। सब अंडा भिड़ के तैयार हो गए। एक बूढ़ा बोले कि मुझे तो कुछ सकुन ऐसा दिखाई पड़ रहा है, आप इसे क्यों उत्पटांग कर रहे हैं ना, क्या ना, मुझे लग रहा है ढंग से पता करो, ये उनको लड़ने जा रहा है कि और कुछ नहीं, और किसी ने सन्ने लेकर जा रहे हैं, वो कुछ हो रहे पता करो। तब विचार आया कि कुछ काम करने से पहले भली प्रकार से कारण जान लेना चाहिए, बिना सही प्रकार से कारण को जाने बिना कई अगर काम कर देते हैं केवल जीवन भर पछताते रह जाएंगे, केवल जीवन भर पछताते रह जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, पति नहीं थे, बेचारी गरीब थी, दूसरे से काम दाम करके अपने, उनके एक छोटी संतान थे, केवल अभी उनको कुछ महीना का थे, 8-10 महीना का पुत्र था उसका, उनको लालन पालन करता था, दूसरे घर में काम काज करके किसी करके काम करता था, गरीब था। तो वो अपने घर में एक मैंगूस अंदर नेवला समझते, नेवला के पाल करके रखा था, पेट मैंगूस था उनका घर में। तो वो कभी कभी बाहर के काम करने चले जाती थी, चला था तो नेवला रखता था वो थे, वो मेरा उनको जिस पुत्र से मानता था नेवला, और बेटा को रख के चला जाता था वो तो था। तो एक दिन उन्होंने, घर में पानी नहीं था, दूर में झरना में पानी लेने के लिए गई अपने कलसी लेकर के, और बेटा को सुला दी थी बगीचा के पास, और झरना में पानी लेने चली गई जंगल में, नेवला घूम रहा था। इस समय में हठात बारिश के दिन था, कोई जंगल से एक सांप आ गया, एक कोबरा आ गया, कोबरा आ जाते हैं बारिश के समय, पानी आता है तो जंगल से जहाँ पानी घुस जाता है बिल में सो आ जाते हैं ऊपर, तो ऊपर आ गया, घर में आ गया, घर में वो बच्चा सोया था घर में कोबरा आ गया, तो कोबरा बच्चा को काट देगा, बच्चा मर जाएगा, बच्चा को तो उपाय नहीं। तो नेवला था, और नेवला बोला मैं इस घर के नमक खाया हूँ, इसी घर में उनके बच्चा के माँ ने मुझे जो भी बच्चा कुछा झूठा मुझे खिलाता है मैं खा के रहता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी कोबरा बच्चा को काट देगा मैं किसी शाम करूँगा। तो उन्होंने गार्डिंग किया, वो कोबरा आया बच्चा के पास, उनका आने नहीं दिया, नेवला का और कोबरा का लड़ाई हुआ। वो बड़ा था सांप, वो छोटा नेवला था, लेकिन पूरा जी जान लाकर लड़ा, लड़ करके कोबरा को मारना, मार के उसको काट कर पीस पीस कर दिया, पूरे उनके शरीर में रक्ताक्त हो गया, लोहा लुहान हो गया, सब सांप रक्त पूरा शरीर में, मुँह इधर उधर सारे रक्ताक्त हो गया। अगर काट कर सब खंडन करके आ गया, सांप मर जा मर गया उसको काटने के बाद, नवला तो इतने खुश हो गया, हमें बचा दिया, मेरे बालक को बचा दिया, इतने खुश हो गया, खुश हो करके दौड़ते दौड़ते आया अपने माँ को बताने के लिए। माँ अभी पानी लेकर झरना से आ रही थी, खुशी होकर आ रहा था, देखो मैंने सांप आ रहा था काटने के लिए, मैं सांप को मार दिया, आप हमारा भाई बच गया, खुश होकर आया था बचाने के लिए। लेकिन वो स्त्री ने देखा, अरे बदमाश नवला, तू मेरे बच्चा को काट दिया, मार दिया उसको, नहीं तो रक्त किसी तरह मुख से आया, मैं छोड़कर आया था, मैं तुझे इतने खिलाया पिलाया पाल कर रखा था, तू आज मेरे पुत्र को काट दिया, सारा मुंह से रक्त, लेकिन मुझे दिखा नहीं आया है। गुस्सा करके जो पानी कलसी लेकर जा रहा था मटका, उसी के ऊपर पटका, वो छट 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 होकर पड़ गया, गुस्सा आकर के पैर को चाट धोवाया, मटका टूट गया, आकर देखता है बच्चा तो खिल रहा है, सांप मर के पड़ा है, ब्लॉक हो रहा है, अब सर पीट पीट कर रो रहा है, हाय क्या कर दिया मैंने, क्या और क्या, जीवन भर पछताना पड़ेगा। यही होता है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता, काम बिगाड़े अपना। इस प्रकार बिना विचार करके ये करने जा रहे थे, तो उस वृद्ध ने बोला कि नहीं और एक बार विचार करो, इसे ने जानकार करो तो क्या कारण है, अब राम की लड़ाई कैसे सोच लिया भरत जी से करेंगे, न बात सही है। तो जानने के लिए स्वयं गुहक ने कुछ अपने विश्वस्त सेवक लेकर के गए, कैसे जाऊँ, बोले मैं भेंट सामग्री लेकर जाता हूँ, देखूंगा उनका मन विडन करूँगा कि क्या उनका मन में है। कोई बेचारे जंगली भील थे, उनके पास भेंट सामग्री देने के लिए होता क्या है, कुछ ऐसे चमड़ा और फल फूल कुछ ऐसी सामग्री लेकर के गए, जा रहे थे इधर से भरत, और जो भरत शत्रुघ्न आ रहे थे उस रथ में सुमंत जी आ रहे थे, वो रास्ता देख रहे सुमंत लेकर आए थे राम को छोड़ने के लिए, सुमंत जी आ रहे थे, सुमंत जी वो देखे कि गुहक आ रहा है, सुमंत ने भरत को बताया, बोले ये देखिए ये राम मित्र है, राम के परम प्रिय सखा है ये सबर राज गुहक। जैसे भरत जी ने सुने कि मेरे भ्रात के परम प्रिय सखा आ रहे हैं, खुद पड़े रथ से, खुद पढ़ कर के दौड़े, गुहक देख रहे थे उनके व्यवहार को, ये कुमार भरत, सुन करके सुमंत के मुख सुमंत को पहचान देते गुहक ने, सुमंत जी को बताया कि राम के प्रिय सखा रहे, बात सुन करके कूद पड़े पागल की तरह चलती हुई गाड़ी से, कूद करके दौड़े, इतने पागल विकल होकर दौड़े, आ करके चरण में गिर गए, ये उठाकर आलिंगन बोले ना मैं तुम्हारा आलिंगन के योग्य नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई के तू आलिंगन के पात्र हो, मैं तो मेरा स्थान तो तुम्हारा चरण में है, तू राम मित्र हो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, मैं राम के दास हूँ, आपके भी दास हूँ। इस प्रकार वार्ता व्यवहार को सुन करके गुहक का हृदय पानी पानी हो गया, ऐसे निष्कपट हृदय था, लेकिन अभी समझ में आया, हाय 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 मैं क्या कर रहा था, इतने बड़े राम भक्त को मैं उनको क्या सोच रहा था, अत्यंत ग्लानी होने लगा मन में, बहुत अपने आप को कोसने लगा, हाय हाय तू निकम्मा, तू क्या समझ रखा था, कितने उदार हृदय है, कितने भरी राम प्रति उनके उदारता विचार है, सेवा हो तू उनको ही समझ रखा था, अपने को ग्लानी हुआ अधिकार करते रहा, उनको साथ में लेकर के गया। अब उस समय से भरत और रथ नहीं गए, उनके साथ चल करके गए, जाकर दिखाए यही स्थान था जहाँ सीताराम रात्रि में शयन किए थे, एक पेड़ के नीचे कोई ग्रास घास बिछा हुआ था, एक घास के ऊपर गंगा तट पर सोए थे। भरत जी सज्जा को देख करके मूर्छित होकर गिर पड़े, गिर पड़ के घंटे भर वही होने लगे, रात हो गया, सब बैठे चलेंगे ना, कैसे जाऊँ रात विश्राम करो ही ना, मैं कैसे विश्राम करूँ, मेरे प्रभु श्री राम तो ये घास के ऊपर सोए थे, मैं कैसे सोऊँ, अब मिट्टी के खोद कर उसका नीचे सोना पड़ेगा, नहीं तो मैं सो नहीं सकता, मैं सो ही नहीं सकता हूँ। रात भर जग करके उस कुहक के साथ केवल राम के साथ विचार कर, वो नींद नहीं सो पाए, उन्हें सो कैसे सकता, सो नहीं। इस प्रकार से रात्रि विचार करके दूसरे दिन गंगा पार करते हैं, इतने बड़ी हजारों लाखों संख्या में चतुरंगनी सेना लेकर गए थे अयोध्यावासी सारे, बहुत बड़े समय लगा, लंबा समय, कई ब्याज नौका पारी हो गए, दस पाँच सात हज़ार नौका चले होंगे एक्शन में, तो अभी दो चार ट्रिप किए होंगे, पारी किए होंगे, तो मोटर बोट थोड़ी था, हाथ में चाकू चला के पारी करते होंगे। अभी साढ़ गंगा जी थोड़ा था, पारी करा करके आए। पारी होने के बाद तो वो उस गुहक साथ में आए थे, समझते जा रहे थे, बोले मैं तो ये आश्रम तक आया था, यहीं पर उतराई हुआ था, यहीं पर उतर करके गए थे। पहली बार जब पहली बार उतरवाई हुआ था, इसे कहते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं कि वो केवट भी बड़े चतुराई किया था। केवट को जो बुलाए थे, बोला कि चलो नाव लेके पारी कर दो। ऑलरेडी राजा ने ऑर्डर दिया था और लक्ष्मण ने बोला कि आ जाओ, उन्होंने गंगा नौका लेकर आया पारी करने के लिए। अब जैसे नौका के पास भगवान गए नौका में बैठने के लिए, बोला थोड़ा रुक जाइए, क्या नहीं आप चढ़ नहीं सकते नौका, क्यों ना, मैंने आपका चढ़ नहीं सकता, पहले मेरा काम करनी ना, तो पैर धोना पड़ेगा। बोले क्यों, बोले मैंने इसे सुन रखा हूँ कि आपका पैर के धूली को टच करके आपके चरण स्पर्श से एक पत्थर भी स्त्री बन गया, मैंने सुना है ना, नहीं अहल्या जी बन गया ना, बोले कि पत्थर भी एक स्त्री बन गया आपके चरण स्पर्श पा करके, तो इसलिए मेरा डर है ना, क्या डर है, एक तो पत्थर था ये लकड़ी है, हो ये जब सुंदरी बन गई उससे ज़्यादा सुंदरी बन जाएगी, और गड़बड़ी तो और बात है ना, क्या पत्थर तो एक था, ये नौका एक लकड़ी से बना नहीं है, कई लकड़ी जॉइंट हुआ है, और इतने अगर नारी बन गए तो एक तो घर में एक है, अगर इतने एक्स्ट्रा हो जाए तो बाप रे बाप, राम राम, हम नहीं कर सकते इसलिए भारी विपत्ति आ जाएगा, आप धूल नहीं रहना चाहिए आपके चरण में, इसलिए मैं डर रहा हूँ, मैं धो धा करके तब चढ़ाऊंगा। भगवान राजी हो गए, क्या कहें, बोले ठीक है धुला कर दो। उनके पास धुलाने के लिए तो कोई लोटा था नहीं, कि कोई व्यवस्था तो था नहीं, गरीब धीवर था, नौका चलाने वाला था, उसका एक कठौती था, कठौती समझते ना, लकड़ी का बना हुआ एक जल पात्र, जिनके द्वारा नौका में पानी कभी घुस जाता ना, उसको उठा कर फेंकता है, तो इसी कठौती जा करके पानी डुबा के ले आया। अब लाला मैं पैर धुला, और किसी का नहीं, केवल आपका ही चरण झुक करके हुआ था गड़बड़े, तो आप पैर धुलाऊंगा, तो भगवान को पैर धुलाने लगा, धुला कर एक पैर धुला, फिर रख बोलता ना, फिर उसमें धुल लग गया, फिर गड़बड़ हो गया, फिर बोला ना, फिर उसको धोया, बारम्बार धो रहा था। भगवान बोले अरे भाई धो रहा तो फिर ना वो क्या करूँ, धोता हूँ तो पानी लग जाए, धूल लग जाता, फिर गड़बड़ हो, डर लगता है ना, फिर ऐसा करो एक पैर धो, थोड़ा ऊपर रखूँ एक पैर धोता हूँ ना, कैसे ना उस पर मैं चावल तो था नहीं, मेरे एक वस्त्र उतार करके बोलते मेरे वस्त्र के ऊपर पैर धरो, दूसरे पैर में धो रहा हूँ, इसे उठा कर, भर मैं एक पैर में कैसे खड़ा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं हाथ मेरे सर में धर दो, हाँ गिर जाएंगे डर लगता ना, सर में धर दो, खड़ा हो जाएंगे। भगवान राम बोले अरे केवट मैं हार गया आज, क्या बोले सारे दुनिया वाले जो गिर रहे हैं मैं उनको टिका रहा हूँ उनको सहारा मैं दे रहा हूँ, दुनिया जो गिर रहा है दुनिया वाले, लेकिन मैं आज गिर रहा हूँ, तू मुझे सहारा दे रहा है, पकड़ लो मुझे तेरे बाद मैं हार गया। बोलते सर में पकड़ लो, दोनों हाथ सर में दे दो और एक पैर उठा दो, मैं धो देता हूँ। ऐसे वो महाभागी बड़भागी नाविक उन्होंने भगवान के चरण धो करके अपने उतरी में उनको धारण करा करके बुलाया, पार कराया, पूरा गंगा पार करा, पार करा जो उतर गए, भगवान राम बड़े अपने आप को दुखी महसूस करते थे, क्यों, क्योंकि कुछ उतराई देने के लिए नहीं, पैसा नहीं उनके पास, इतने बड़े गंगा पार करा कर लाया, घंटे भर पारी कराया, मैं एक पैसा भी नहीं, उसके एक रुपया भी नहीं देने के लिए, क्या करूँ। भगवान बड़े उदार हैं, बहुत शर्म आ रहा था मन में, किस नहीं क्या करूं क्या दूं, इस मनोभाव अपने धर्म पत्नी सीता जी समझ गई। सीता जी के हाथ में एक अंगूठी थी, वो निकाल के बोले प्रभु ये लीजिए, मैं समझ रहा हूं कि आप कुछ देना चाहते हैं, हाँ बहुत इच्छा है, उनको उतराई देना चाहिए था, तो लेकर बोले बोले नाविक ये ले लो। वो नाविक आया, केवट आया, बोला ना मैं नहीं लूँगा, पेमेंट नहीं लूँगा। बोला क्यों, बोले हम स्टाफ है, स्टाफ स्टाफ से पेमेंट थोड़ी लेता है, बोले स्टाफ है, जैसे कोई बस कंडक्टर हो दूसरी बस में जाएगा, जो गवर्नमेंट बस कंडक्टर होगा यूपीएससी, आपका चंडीगढ़ में कौन सा चलता है, सिटी ओ, सिटी ओ के जो कंडक्टर दूसरा सिटी में जाएगा वो कंडक्टर पैसा लगेगा उनसे, बोले ना स्टाफ सर तो आप स्टाफ है, बोले स्टाफ क्या, बोले मैं तो गंगा पार करवाता हूँ, आप समुद्र पार करवाते हैं, आप भवसागर पार करवाते हैं, मैं आप तो बड़ा नाम केवट है, मैं छोटा केवट हूँ। तो आप ये बारी तो एक बार आया है, हाँ सबका बारी तो एक बार है, मेरा बारी भी आएगा, तब तो आप भी उस दिन पैसा नहीं लेना एडवांस बुकिंग नहीं दे पाऊंगा। जब मेरा बारी आएगा आपको बारी कराना होगा, मैं भी उस दिन पेमेंट छोड़ देना मुझे स्टाफ समझ करके। तो इस प्रकार से पार करा के जब आते हैं तो तब गुहक बोलता है कि इसी प्रकार इस पेड़ के नीचे सीताराम यहाँ विश्राम किए थे गंगा पार करने के बाद, फिर यहीं से चल करके गए थे भरद्वाज आश्रम। भरत जी इस बात सुनकर बोले वहीं से चल कर गए थे ना, बोले मैं कैसे रथ में जा सकता, मैं भी चल करके जाऊँगा, जिद पकड़ में चल करके जाऊँगा। बोले चल करके नहीं, मेरे प्रभु तो चल कर गए थे, मैं चल कर भी नहीं जा सकता हूँ, मैं तो घुटने पर नेल डाउन होकर घुटने पर जाऊँगा प्रणाम करते करते, और घुटने पर आए सब छील गया था, ब्लीडिंग हो रहा था इतने धूप में गर्मी में, फिर भी ऐसे करते करते आए। सारे रथ रथी हजारों संख्या में आ गए भरद्वाज आश्रम में, लेकिन भरत पीछे पीछे आ कर पहुँचे, इतने तेजी से फिर भी आ रहे थे घुटने पर चल चल आकर पहुँचे भरद्वाज। अब देखे पहले तो तीन ही आदमी गेस्ट थे, अब तो 3 लाख गेस्ट आ गए। भाई बाजार सौदा कुछ है नहीं, आप लोग 132 में हाल खराब होता है किचन वालों का, अब वो 3 लाख आ गए बिना नोटिस में, कोई पहले एडवांस बुकिंग में नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे, अब कैसे खान पान कैसे व्यवस्था करेंगे। लेकिन भरद्वाज के पास एक कामधन गाय थे, एक गाय की कृपा से आज 3 लाख सैन्य चतुरंगिणी गजवाहिनी अश्ववाहिनी सभी पदातिक और सब राज कर्मचारी सभी को भली भांति, जिनको अटैच बाथरूम चाहिए, जिनको एसी चाहिए, किनको नॉन एसी चाहिए, किनको किस प्रकार बेड चाहिए, आज इट इज व्यवस्था हो गया गेस्ट हाउस का। और खान पान का तो कहना ही क्या, जिनको जैसा चाहिए दिव्य दिव्य पेय आहार आदि व्यवस्था हुआ राम सा, ऐसे फल फूल व्यवस्था हुआ कि अयोध्या के जितने सैनिक जितने घोड़े हाथ सब बोले हम यहीं रहेंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। तो यार इतने इस प्रकार के खान पान में भरता हम अयोध्या में अब तक नहीं मिला था, दशरथ के जमाने से हम रोक कर ऐसा नहीं मिला था, ऐसे ट्रीटमेंट ऐसा व्यवस्था है रहने चाहते। तो अंततः कुमार भरत पहुँचे, उनको लेकर के भरद्वाज ने संगम में गए, संगम स्नान कराए, संगम जा करके माँ गंगा जमुना के मिलन स्थल में कुमार भरत ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए संगम देवी को, इस तीर्थराज को प्रार्थना किए कि किस प्रकार से मेरा एकांत इच्छा भगवान राम के दर्शन हो जाए, और वो कैसे आ जाए, मेरा एकमात्र इच्छा और कुछ भी नहीं, केवल राम की खुशी हो जाए, राम की प्रसन्नता की इच्छा है, और इस प्रकार ही पापी भरत को आप कृपा कीजिए, ऐसी प्रार्थना किए। उनके इस प्रकार प्रार्थना, इस प्रकार दैन्य भाव, इस प्रकार भाव से विनम्र स्नान आदि को देख करके भरद्वाज ऋषि आज कृतार्थ मानते थे अपने आप को, इतने धन्य मानते थे, वाह वाह मान गया भरत, मान गया राम भक्त भी तो मैं भी हूँ। मैं उनको अभी 2 दिन पहले चर्चा किया था, 2 दिन पहले कितना क्या किया, लेकिन तेरे अंदर ऐसी भाव है राम। तो भरद्वाज जी के अपनी कथन है, उन्होंने बोलते हैं सभी सभा में आकर के सबके सामने, शाम को जो क्लास रूम है सबके सामने बोले, बोले देखिए मेरे मन में ये बड़े प्रश्न उठ चल रहा था कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, नाना प्रकार के व्रत जप तप साधन प्रकार सब किया, ये सभी साधन भजन ये सब के महाप्रभाव के कारण साक्षात परम पुरुष परम ब्रह्म भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन और सेवा के दुर्लभ फल मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा मन में यही प्रश्न चल रहा था कि साक्षात परम पुरुष भगवान परमेश्वर का साक्षात दर्शन सेवा का फल ही क्या हो सकता है, जब सारे जीवन अवधि सत्कर्म साधन का फल भगवत सेवा मिला, भगवत दर्शन हुआ, भगवत दर्शन का फल क्या हो सकता है। आज मुझे पता चला कि साक्षात सीताराम लक्ष्मण के साक्षात दर्शन और सेवा का फल हुआ भरत के दर्शन, भरत के दर्शन ही भगवान राम दर्शन में बढ़कर के उनके फल है, भरत जैसे भक्तों का दर्शन हुआ तो भक्तों के दर्शन भगवान के दर्शन की ओर बढ़ा। इस प्रकार कह करके भरत को ससम्मान ला करके उनके साथ भी भरत भी हो जाते, भरद्वाज भी उनके साथ बोले आपके साथ मैं चलूंगा, राम तो साथ में नहीं लिए, आपके साथ तो लाखों लोग कर जा रहा है, अपने पूरा स्टेट चल रहा है, तो मैं भी साथ में चलूंगा आपके साथ, मेरा भी दर्शन हो जाएगा राम। वो भी चल पड़े, पूरे आश्रम चल पड़ा उनके साथ में, आप ही चल पड़े, आप उनके साथ तो मिलिट्री सब थे, पर जमुना पार हो गए, हो करके आए और जंगल के साथ एक कोल भील देखे थे कि तीन जा रहे थे किस प्रकार के भाव से, आज चतुरंगिणी सेना के साथ कुमार भरत जा रहे हैं, लेकिन जब राम जा रहे थे इतने गर्मी था, कुछ खान पान के लिए नहीं होता था, उनके सहायता चाह रहे थे, लेकिन भरत जा रहे हैं ऊपर से इंद्र आदि देवता आकर के छाव करते हैं, कोई बारिश कर रहे हैं, कोई पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, कोई फल वृष्टि कर रहे हैं, देवता भी संभाल नहीं सकते हैं, बोलते हैं बाप रे बाप। देवता सोच रहे कि भरत जाकर अगर राम को ऐसे पटा कर ले आया तब तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, राम तो फिर रावण वध तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उपाय कर रहे थे कैसे भरत ना जा पावे, कई उपाय कर कैसे ना जा पावे, जाकर बृहस्पति के बोले सरस्वती बोले मैं नहीं जाऊँगा, वो एक ड्यूटी किया दूसरा ड्यूटी मैं नहीं करूँगा, बृहस्पति बोले बृहस्पति डांटे उनको, बोले अरे पागल ऐसा मत समझो, भगवान के काम ने बिगाड़ा, भगवान ने कुछ नहीं किया माफ कर दिए, लेकिन भगवान के भक्तों के काम बिगाड़ोगे भगवान सहन नहीं करेंगे, आपका सारे सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे डांटे बृहस्पति जी ने, बोले फिर ना ऐसे मन में सोचा क्यों, या कि मदद करो, तू इंद्र आदि डर के मारे आकर बारिश कर ली, बाप रे बाप गलती हो गई, हम उनको बिगाड़ना चाह रहे थे, बृहस्पति डांटे, बोले भक्तों के प्रोजेक्ट को विरोध नहीं करना, भगवान गुस्सा करेंगे, भगवान के काम को बिगाड़ सकते हो चलेगा, ही विल डाइजेस्ट इट, बट ही कैन डाइजेस्ट, हम भरत जी के से काम, तो उन्होंने भी सहायता की, तो भरत जी ने रो रो के जा रहे थे, भरत किस प्रकार आते हैं, जब इतने लाखों लोगों के साथ में जब चित्रकूट को प्रवेश कर रहे हैं, जो भी चित्रकूट के जितने आदिवासी कोल भील लोग थे उनको जब खबर मिल गया कि भरत जी आ रहे हैं, मना करके राम को ले जाएंगे वापस, सब यूनाइट हो गए, नहीं जाने देंगे, यहाँ के जितने ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मण सब थे, हम नहीं जाने देंगे, भगवान को मिले हैं कौन छोड़ेगा, अरे तुम्हारा घर में 14 साल हो तो फिर भी तो जाएंगे, पर राजा है राजा ही रहेंगे, थोड़े दिन हमारे पास रहेंगे तो क्यों इतने स्ट्रो हमको छुड़ा ले जाते, हम जाने नहीं देंगे, हैं पितृ आदेश पालन करने के हैं, नीति है नियम है, सब अपने अपने पॉइंट ढूंढे, सब पॉइंट ढूंढ कर रेडी कर रखे, जाने नहीं देंगे, किसी कीमत पर रोकेंगे, पूरे जंगल के लते पते पशु पक्षी कोल भील ऋषि मुनि ब्राह्मण सब यूनाइट हुए, इकट्ठा होकर बैठे, किसी भी पॉइंट में भगवान तो जाना चाहते भी नहीं थे, खूब भगवान को निहुरा जुहार होकर के समझा करके बुझा करके, बोले प्रभु हम छोड़कर मत जाइए, हम छोड़कर मत जाइए, बड़े सौभाग्य से हमको प्राप्त हुए हैं, इस हम छोड़कर मत जाइए, कुछ दिन यहाँ रहिए, अभी आके भी हम फटा कर ले जाएंगे, और देवता भी यही चाह रहे थे कि भगवान ना जाए, वो भी समझा रहे थे नहीं जाए, सारे देवी देवता समूह, वनस्पति समूह, सारे वनवासी समूह, सारे ऋषि मुनि समूह, साक्षात भगवान स्वयं नहीं चाहते हैं किसी प्रकार से प्लाट दिखा कर वापस नहीं जाऊं, भरत को मना कर दूं, और भरत के समाज पूरा अयोध्या के समाज चल बैठा है, हम समझा कर राम को लेकर आएंगे, साक्षात भरत राम प्रेम में आबाद मस्तक भरपूर है, सरोवर है, चल रहे, जब चित्रकूट के आसपास आ गए, रास्ता में सब गड़बड़ कर दिए थे, कोई पत्थर बिछा दिया, कोई कंटक बिछा दिया, कुछ बजा के खुद खा दिया, किसी नहीं आ पावे, गड़बड़ हो जाए नहीं आ पावे, लेकिन ये पत्थर ये कंटक ये सूखे लकड़ी पत्थर भी भरत के प्रेम के सामने पिघल कर पानी हो गए, उनको रास्ता छोड़ दिया, यहाँ के पशु पक्षी कोल भील भी जब भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी जो भरत के सामने वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लक्ष्मण से विरासन, बोले अगर ऐसा है तो मैं जीवित जीती जी भरत जी को आने नहीं दूंगा, वहीं गिरा दूंगा, राम के पास आए परमिशन मांगने, भगवान राम बोले अच्छा ऐसे समझ रखा, भगवान ने डांटे लक्ष्मण को, तू भरत जी को अब तक नहीं समझा मेरे भाई, भरत को तू नहीं समझा, अब देख आने के बाद तुझे समझ में आया, तो लक्ष्मण को ग्लानि हुआ, भक्तों को समझना इतने आसान बात है, भक्त के भाव तो केवल भगवान ही समझ सकते हैं, और नहीं तो इसी स्तर में जो भक्त है वही समझ सकता है, बाकी समझना वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा, नहीं समझ सकता, नहीं समझ पाए, तो इस प्रकार से जब भरत जी अप्रोच किए, दूर से उनके व्यवहार उनके रीति नीति इसको देख करके जो भी बैठे थे इधर सबका मन उद्वेलन होने लगा, सबका मन उद्वेलन लगा होने लगा। वो आकर के बैठे, जो राम के साथ भरत जी का जो मिलन हुआ, अद्भुत मिलन हुआ। मिलन के बाद पंचायत बैठ गया, हजारों लाखों अयोध्यावासी और मंत्री पारिषद सत्र मातृगण गुरुजन सब बैठे, इधर से ऋषि मुनि और कोल भील सब बैठे, बड़ी भारी सभा बैठा आर्गुमेंट होने के लिए। कोई पॉइंट नहीं था कि राम को राजी करा देंगे, सारे यूनाइटेड थे मना करेंगे, सब बोल दिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मना करेंगे। ये सब पॉइंट सुन करके अयोध्यावासी भी सुनकर बोले क्या करेंगे, राजी नहीं हो रहे, क्या करें? हम आए इतने को मान नहीं रहे और क्या करें, कितु से हम मान राजा के बात पालन। ऐसे अंत में भरत जी को बोलने दिया, भरत जी अब तक भी रो रहे थे, वो तो लास्ट में आए, वो तो कुछ बोले तो नहीं, बोले मैं क्या मेरे बोली चले, मैं सबसे अति हतभागी हूँ, मेरे बोलने का योग्यता है कहाँ, इसलिए नहीं बोल रहे थे, आप लोग बोलिए, सबको बोला, सब बोल कर हार गए। अंत जब भरत के बारी आया, जब वो उठने लगे, वो उठ कर जब बोलना शुरू किए, उनका बोलना शुरू करते ही सारे पट गए, मिनटों में सारे वोट एक तरफ आ गए, सब उनके साइडेड हो गए। सारे कोल भीली बोले ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चला जाना चाहिए राम जी, चला जाना चाहिए। ऋषि मुनि बोले चलो हम तो ऐसे ही पहले थे, कभी हम हुआ भी जाकर जैसे भेंट करके आ जाएंगे, उनको चला जाना चाहिए। सभी राजी हो गए, भरत जी का आरती को देख करके सब बोले कि नहीं आपको चला जाना चाहिए। अब भगवान राम देखे, अब तो मेरे सामने कंपटीशन भरत का और राम का कंपटीशन हो रहा, मेरे पक्ष में एक भी वोट नहीं। जब इलेक्शन लड़ेंगे भाई, एक तरफ से देखा उनके परिवार के लोग ही वोट उनको दे दी, यहाँ तक लक्ष्मण सीता तक भी बोले बोले नहीं आप। अब राम बोले अब भरत मैं क्या करूँ, अब मेरे एक ही मेरा वोट मेरे साथ है, उसको लेकर क्या करूँ, कुछ होने वाला तो है नहीं, सारे वोट आपके तरफ हो गया, एक मिनट में तो सब जीत लिया, कंप्लीट जीत लिया। अब मेरे पत्नी भी आपको सपोर्ट कर रही है, लक्ष्मण भी आपको सपोर्ट कर, सारे मेरे जो पार्टी के लोग थे सारे सपोर्ट आपको वोट दे रहे, मैं अकेले, मेरे एक वोट अपना कैंडिडेट मेरा है, कैंडिडेटशिप बचाने के लिए, उसको कहा कि रघु बदनाम होंगे, वो भी मैं आपको देता हूँ, लो खत्म, आप क्या करूँ, तू ही जीतो, मैं भी आप देता हूँ, क्या ना तू जो डिसाइड करोगे वही होगा, दैट्स इट, आपके बॉल इज इन योर कोर्ट, आप जो कहेंगे सुनो, जो डिसाइड आप बोलोगे। तो सारे समाज भरत को देखने हैं, साक्षात सभी के विद्यमान में भगवान राम घोषणा करके बोल दिए, भरत तू जो कहोगे वही होगा, तू जो कहोगे अब चलो, मैं अभी चल पड़ूंगा, ठीक है, ये मैं वचन देता हूँ। सब खुश हो गए, सबका मुंह में खिलखिल आ गया, लेकिन फिर भरत उठे, बोले प्रभु आप है प्रभु, मैं हैं आपके दास, दासत्व के दासता सबसे बड़ी कठिनाई है, बड़े कठिनाई है, बड़े कसौटी से परीक्षा करना होता है। आप बोल दिए बल इज इन माई कोर्ट, मैं जो कहूँ सही होगा, ये दास कैसे हो सकता है, दास कभी प्रभु को अपने हिसाब से चलाएगा, ये दास है, ये कृतज्ञ है, ये कृतज्ञ नहीं हो सकता, जो कृतज्ञ दास है वो केवल प्रभु के मन के हिसाब से काम करे, उनका अपनापन नहीं चला सकता, तो आप कैसे बोल दिए। तो इसलिए मेरे तो केवल यही इच्छा, आप जब चाहते हैं, मेरा केवल यही इच्छा है जिसमें आप खुशी हो मैं वही चाहता हूँ, आपके प्रसन्नता ही मेरा इच्छा है बस। अब क्या करें, खत्म हो गया डिजाइन, राम बोले मैं तो ही चाहता हूँ कि मैं मन बस आप जो चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप अयोध्या करे ना, मैं चाहूँ मैं चाह नहीं सकता, मैं दास हूँ, दास का अपना चाह, दास हमेशा पराधीन है, किस स्वाधीन विचार उनका हो सकता, केवल स्वाधीन तो आप है, स्वतंत्र आप है, मैं परतंत्र हूँ, मेरे विचार से अपना, मेरा तो एकमात्र ही निर्णय है जिसमें आप प्रसन्न हो वही मेरा इच्छा है बस, आप में जिसमें खुशी हो, आप वन में रहने से खुशी हो तो वन में रहो, आप चाहते हैं आपके बदले मैं शत्रुघ्न वनवासी हो जाऊँ, जो डिसीजन आप लेते हैं दैट्स इट। इस प्रकार भगवान राम के, भगवान भी भक्तों की भक्ति के सामने पराभव स्वीकार करते हैं और ये प्रमाणित होता है राम भरत मिलन में। इस प्रकार भरत आपने राम को विजय किया था अपनी भक्ति में, इसी से श्री चरण पादुका को पहना करके प्रसादी लेकर गए थे और नंदीग्राम में जा करके कठोर तप किए थे, लक्ष्मण तप से भी और भारी तप भरत जी किए थे, 14 साल वो भी तप किए। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर मिला के वर्णन है, इस कामतगिरी में भरत और राम की मिलन स्थली है और इस प्रकार भगवान की साक्षात उनके वासस्थली है। इस प्रकार के अनेक चित्र विचित्र वन राजी के समूह बीच में भगवान अपने सीताराम अपने भाई के साथ में कितने कितने वर्षों यहाँ रह करके रहन सहन खान पान स्नान आदि जो सब किए हैं संग, ये सब पुनीत स्थली है, उसको अभी समय है, अभी चलेंगे हम लोग इस उनके भगवान की निवास स्थली उनके नित्य निवास श्री कामतनाथ गिरी की परिक्रमा करके आएंगे और फिर कल चित्रकूट के बाकी स्थान दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण।